एलन लड़के, क्या तुम अद्भुत नहीं हो?
धन्यवाद।
मैंने मास्टर को गोबलिन लॉर्ड का जादुई पत्थर सौंप दिया और उसे खरीद लिया। इससे मेरे गिल्ड कार्ड पर गोबलिन डंगोन जीतने का रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। मैं स्ट्रेसिन गांव से गाड़ी लेकर लुर्डेन वापस आया और सीधे गिल्ड में गया। और तुमने कुल 138 गोबलिनों को हराया है। इसके साथ स्ट्रेसिन की गोबलिन समस्या फिलहाल ठीक लगती है। शाबाश एलन बॉय, मास्टर जी ने मेरे सिर पर जोर से थपथपाते हुए कहा। इस प्रकार स्ट्रेसिन गांव में भूतों को नष्ट करने का स्थायी अनुरोध वापस ले लिया गया। खैर, मेरा गिल्ड कार्ड अब इस तरह दिखता है। नाम एलन, रैंक ई, आयु 12, आशीर्वाद पवन देवता, कौशल छिपाव मूल्यांकन रसायन विद्या पवन जादू एकाधिक मंत्र, निवास स्थान लुर्डेन, संपत्ति 5519416, स्तर 6, ताकत ई, जादुई शक्ति डी, उपलब्धियां गोब्लिन डंगोन विजेता, लेवल 6 पर पहुंच गया है। 200,000 सेंट का वशीकरण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। गोब्लिन डंगोन विजय पुरस्कार, या यूं कहें कि भगवान के जादुई पत्थर की बिक्री से लगभग 500,000 सेंट का वास्तविक लाभ भी प्राप्त हुआ है। टीएल, क्या बात है, उसने लेवल 1 पर रहते हुए ही एक डंगोन को अकेले ही पार कर लिया। अगली रणनीति गोब्लिन डंगोन में तेज गति से चक्कर लगाकर स्तर बढ़ाना है। मैं स्तर बढ़ाना चाहता हूं ताकि अगले डंगोन को चुनौती दे सकूं, लेकिन तेज गति वाले चक्करों के लिए मुझे एक ऐसा हथियार चाहिए जो गोब्लिन लॉर्ड को एक ही बार में हरा सके, वरना ऑफ डंगोन को जीतना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी योजना मैंने अगले वाले के लिए बनाई थी। तो मैं कुछ समय तक नई बंदूकों पर शोध और विकास करूंगा। इसके लिए मैं अपना घर बदलना चाहूंगा। मैं हमेशा के लिए अपनी माँ के साथ एक छोटे से एक कमरे वाले घर में एक ही कमरे में नहीं सो सकता है ना। इसके अलावा मुझे सामान रखने के लिए एक गोदाम भी चाहिए। मैं लगभग 2 या 3 एकड़ के अपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ और अपनी माँ को बेहतर जीवन देना चाहता हूँ। इसलिए मैं गिल्ड प्रक्रिया पूरी करने के बाद घर चला गया। माँ, मैं घर आ गया हूँ। ओह एलन, वापसी पर स्वागत है। क्या तुम्हें चोट लगी? मैं ठीक हूँ। मैं गोबलिन कालकोठरी पर विजय प्राप्त करके वापस आ गया हूँ। माँ, आप कैसी थी? जाहिर है तुम्हारी माँ हमेशा ठीक रहती हैं, और पड़ोस वाली मार्टिना सान भी। ये कुछ और नहीं बल्कि रोजमर्रा की माँ बाप की बातचीत है, जो मुझे किसी भी चीज से ज्यादा गर्मजोशी का एहसास कराती है। जैसी की उम्मीद थी, मैं नियति को अपनी अहम माँ को मुझसे छीनने नहीं दे सकता। वैसे माँ, मैं बहुत पैसा कमाने लगा हूँ, तो क्यों ना हम दोनों एक बड़े अपार्टमेंट में रहने चले जाएं? मैं मुख्य विषय को सामने लाता हूँ। एलन, तुम अभी भी इस घर में रह सकते हो, है ना? और जो पैसा कमाते हो उसे खुद खर्च करो। तुम्हें उसे अपनी माँ की देखभाल पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। खैर, मैंने सोचा कि वह ऐसा कहेगी। ऐसा नहीं है, मैं एक एडवेंचरर हूँ, इसलिए मुझे ढेर सारा सामान रखना पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा सामान नहीं रख सकता, और अगर मैं अलग रहता हूँ तो पैसे की बर्बादी होगी। इसलिए मैं जाना चाहता हूँ, और अगर माँ भी मेरे साथ आए तो मुझे खुशी होगी। माँ मेरी ओर देखती है और कुछ देर सोचती है। और हाँ, मैं अक्सर किसी काम से घर से बाहर निकल जाता हूँ। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि माँ मेरे साथ रहें और मेरी चीज़ों का ध्यान रखें? जब मैं पूरी तरह से घबरा जाता हूँ तो एक कोमल स्पर्श मुझे घेर लेता है। मैं उसे कसकर गले लगाता हूँ, फिर भी वह मुझे प्यार से गले लगाती है। बेवकूफ, तुम्हें इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ अच्छी तरह जानती है कि एलन को क्या करना चाहिए जिससे वह खुश हो जाए। हमेशा की तरह मुझे अंततः सांत्वना मिलती है। इससे मेरा दिल हमेशा गर्मजोशी से भर जाता है। ठीक है, मैं कल छुट्टी पर हूँ, तो क्यों ना हम साथ मिलकर नया घर ढूंढ लें? हाँ, मैंने माँ की बात पर आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। तारांकन 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 तारांकन, हाँ, इसीलिए तो तुम अपनी माँ के साथ गिल्ड में आए हो। मास्टर जी ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा और ऐसा कहा। मैं अपने बेटे का हमेशा ध्यान रखने के लिए आपका ऋणी हूँ। क्या वह ठीक है? क्या वह सभी को असुविधा पहुंचा रहा है? ओह ओह, एलन अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा है। एलन की माँ कैटरीना, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ जिसने एलन बॉय को तलवारबाजी सिखाई थी। मैं रुडोल्फ हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। एलन बॉय एक नवागंतुक है जिससे गिल्ड को बहुत उम्मीदें हैं। उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, और सबसे बढ़कर उसमें 4 सालों से लगभग हर दिन से जारी रखने का साहस है। बहुत से लोग उसकी परवाह करते हैं, इसलिए अगर वह डी रैंक तक पहुंच जाता है तो बहुत से लोग उसे पार्टी में आमंत्रित करेंगे। हमेशा उसकी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओ लेकिन ठीक है, पार्टियों के बारे में बात करते हुए, यदि आप पार्टी में ई रैंक रखते हैं तो उसे नापसंद किया जाएगा, क्योंकि आपके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अनुरोध सीमित होंगे, लेकिन यदि वह डी रैंक का है तो कोई सीमा नहीं होगी। मुझे पता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में भाग्य विनाश की योजना भी है। मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, जब मेरी रैंक बढ़ेगी तो मैं इस बारे में सोचूंगा। यदि मैं अभी इसके बारे में सोचूं तो भी इससे कोई मदद नहीं मिलेगी, इसलिए मैं मुख्य विषय पर लौटूंगा। इसीलिए गुरुजी, मैं चाहता हूं कि आप हमें एक अच्छी संपत्ति से परिचित कराएं। इसीलिए एलन बॉय, गिल्ड कोई ऐसी जगह नहीं है जहां जमीन जायदाद ढूंढी जाए। हालांकि मैं तुम्हें एक प्रॉपर्टी दिखा सकता हूं, लेकिन वह साहसी लोगों के लिए है। वह एक असुरक्षित जगह पर है और मुझे नहीं लगता कि वह कतेरिना सान जैसे आम लोगों के रहने के लिए उपयुक्त है। तो फिर कृपया हमें एक रियल एस्टेट एजेंट से मिलवा दीजिए। ओह, आज एलन बॉय सामान्य से ज्यादा खा रहा है। अगर ऐसा है तो ओह, एलन कुन, क्या तुम आगे बढ़ रहे हो? मोनिका सान ने बगल से आवाज लगाई। लगता है अभी काम का समय नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने सादे कपड़े पहने हैं। क्या आज वो अचानक मुझे गले नहीं लगा लेंगी? ये सही है मोनिका सान, मैं थोड़ा पैसा कमाना शुरू कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी माँ के साथ थोड़े बड़े कमरे में रहने लगूँ। ये बहुत बढ़िया है। तो फिर आप हमारे घर क्यों नहीं आते? हम, अरे एलन कुन, तुमने क्या कल्पना की? इतना कहकर मोनिका सान मंत्रमुग्ध होकर अपने होंठ चाटती हैं। एक साधारण व्यक्ति इस भाव भंगिमा पर आश्चर्यचकित हो सकता है, लेकिन मुझे तो ये किसी सांप द्वारा जीभ निकाले जाने का भ्रम जैसा लग रहा है। ओह नहीं, जब उसने देखा कि मुझे उत्तर देने में कठिनाई हो रही है तो उसने विषय बदल दिया। मेरे पिताजी एक अपार्टमेंट चलाते हैं, इसलिए मैं आपको एक ऐसे घर से परिचित करा सकती हूँ जो एलन कुन के अपने परिवार के साथ रहने के लिए उपयुक्त है, आपको पता है। ओह, एलन कुन की माँ, मैं मोनिका हूँ, मैं यहाँ वेट्रेस का काम करती हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं कैटरीना हूँ, मेरे एलन का हमेशा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। हालांकि देर हो चुकी है, वे एक दूसरे को बधाई देते हैं। मैं समझ गया, अगर यह मोनिका सान का घर है तो यह सुरक्षित रहेगा। लेकिन ये थोड़ा महंगा तो नहीं है? अगर यह एलन कुन है तो 100,000 माह कैसा रहेगा? खैर, निर्णय लेने से पहले इसे देख लें। क्या 100,000 थोड़ा महंगा है? नहीं, उस जर्जर अपार्टमेंट में भी इसकी कीमत शायद 60,000 से 70,000 होगी। क्या ये सौदा नहीं है? ठीक है, चलो चलें और देखें। तो फिर ये तय हो गया। इस प्रकार मैंने मोनिका सान के पिता के अपार्टमेंट को देखने जाने का निर्णय लिया। हम मोनिका सान के पीछे चलना शुरू करते हैं। फिर शहर के केंद्र की ओर लगभग 5 मिनट चलने के बाद मोनिका सान एक शानदार पत्थर की इमारत के सामने रुक गईं। यहाँ सिर्फ चौथी और सबसे ऊपरी मंजिल के कमरे खाली हैं। यह ज्यादा लोकप्रिय नहीं है क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे चढ़ना मुश्किल है। ऐसा कहते हुए मोनिका सान सामान्य प्रवेश द्वार का ताला खोलती हैं और सीढ़ियाँ चढ़ती हैं। शुरुआत में हम 5वीं मंजिल पर रह रहे थे, इसलिए कहा जा सकता है कि चौथी मंजिल थोड़ी आसान होगी। यहाँ ये कमरा, जब मैंने दरवाजा खोला और अंदर गया तो देखा कि एक 3LD के अपार्टमेंट में एक किचन, एक टॉयलेट और यहाँ तक कि एक बाथरूम भी है। पानी पंप करना मुश्किल लग रहा है, लेकिन एक नल तो है। इसका क्या मतलब है? आंगन में एक साझा दीवार है। इसके अलावा, जैसा कि आप देख सकते हैं, पानी का उपयोग करने के लिए जादुई उपकरण है। यहाँ रसोई के बगल वाले आउटलेट में एक पानी का जादुई पत्थर रख दो। अब यदि आप नल को घुमाते हैं तो पानी निकलेगा। कमाल है, क्या ऐसे उपकरण भी थे? इसके अलावा ये प्रकाश का एक जादुई उपकरण है। यदि आप जादुई शक्ति से भरा एक जादुई पत्थर यहाँ रख दें तो यह चमक उठेगा। ये कहते हुए मोनिका सान ने उसमें एक जादुई पत्थर जैसी चीज रख दी और छत सफेद रोशनी से जगमगा उठी। ये स्कूल की छत पर लगी फ्लोरोसेंट लाइट जैसा था। ओह मोनिका सान, सिर्फ 1 लाख में इतना अच्छा कमरा? कतेरिना सान, कोई बात नहीं, एलन कुन एक होनहार साहसी है जिसका भविष्य उज्ज्वल है। मुझे लगता है कि यह निवेश के लायक है। खिड़की से दिखाई देने वाली सड़क मुख्य सड़क जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रैफिक रहता है और वह साफ सुथरी रहती है। ऐसे में सुरक्षा की कोई समस्या नहीं दिखती। मोनिका सान, धन्यवाद, मैं इसे ले लूंगा। एलन, जिनके प्रति आप ऋणी हैं। कतेरिना सान, कोई बात नहीं, जब एलन और भी बेहतर हो जाएगा तो मैं उससे ये वापस ले लूंगी। टीएल, वह एहसान की बात कर रही है। मोनिका सान, इस तरह पहले घर का दौरा करने के बाद नए घर का हमारा चयन पूरा हो गया। तारांकन 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 तारांकन। ओह क्या ये खत्म हो गया? हाँ गुरुजी, मैंने मोनिका सान का एहसान स्वीकार करने का फैसला कर लिया है। क्या ऐसा है? आपके लिए अच्छा है। जब मैंने मोनिका सान की ओर देखा तो उसने आंख मार दी। सुबह से ही गिल्ड के बार में शराब पी रहा एक बेकार वरिष्ठ साहसी मास्टर की बातें सुनकर चिल्लाता है। अरे ये किस काम का? एलन लड़का, मुझे नहीं पता कि वहां कितने बेकार सीनियर्स हैं क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे उसका नाम ठीक से याद है। हाँ जेराड सेनपाई, मैं अपनी माँ के साथ जा रहा हूँ। टीएल, सेनपाई इक्वल्स वरिष्ठ। ओह क्या हमारा छोटा एलन लड़का आखिरकार इतना अच्छा हो गया। मैं अभी भी छोटा हूँ, मास्टर जी ने हमें बीच में टोकते हुए कहा। तो आप कब जा रहे हैं? खैर, ऐसा लगता है कि मैं कभी भी स्थानांतरित हो सकता हूँ, इसलिए मैं इसे व्यवस्थित करने में कुछ समय लूंगा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। क्या, जल्दी करो। अरे तुम सब, हमारा एलन लड़का अपनी माँ के साथ जा रहा है, चलो उसकी मदद करते हैं। अरे मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, और फिर अनुरोध भी होते हैं। एलन बॉय का घर इन अनुरोधों से 100 गुना ज्यादा जरूरी है, मुझे इसकी चिंता है। तुम्हें चुप रहना चाहिए और हमारे साथ आना चाहिए। वो एक बेकार सीनियर होने के बावजूद भी शांत है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि शायद आंसू निकल आए। एलन, आपको ऐसे अद्भुत वरिष्ठ नागरिक मिले हैं, सुनिए आपको इन लोगों का अच्छा ख्याल रखना चाहिए। वरिष्ठ साहसी, मैं एलन की माँ कैटरीना हूँ। एलन का हमेशा साथ देने और उनकी देखभाल करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओह, मैं जेराड हूँ। खैर चिंता मत करो, इस गिल्ड में हम में से हर एक के लिए एलन बॉय हमारे अपने बच्चे की तरह है। धन्यवाद, मुझे नहीं पता कि मैं कभी इस कृतज्ञता का बदला चुका पाऊंगा या नहीं। क्या मैं मदद मांग सकता हूँ? तुम्हें हमारा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, इस गिल्ड में कोई इतना विनम्र आदमी नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमें एलन लड़के की माँ से इजाजत मिल गई है, अब जश्न का समय है। इस तरह किसी कारण से गिल्ड में घूमने वाले सभी बेकार वरिष्ठ लोग मदद करने के लिए तैयार हो गए। कुल मिलाकर लगभग 30 असभ्य लोगों ने फर्नीचर और औजारों को जर्जर अपार्टमेंट से बाहर निकाला और एक के बाद एक नए घर की ओर चल पड़े। जैसा कि साहसी लोगों से उम्मीद की जाती है, वैसा ही मैंने सोचा। मैं अपना सामान ढोने के लिए गाड़ी खींचता हूँ, लेकिन इन वरिष्ठों का क्या? वैसे मेरी माँ नए घर में लाई गई चीजों को व्यवस्थित कर रही हैं। स्थानांतरण समाप्त होने के बाद सभी लोग गिल्ड सराय में आ गए। एडवेंचरर्स, आज आपकी मदद के लिए शुक्रिया, साथ ही मेरे एलन का हमेशा ख्याल रखने के लिए भी शुक्रिया। सभी का शुक्रिया, हम अपने नए घर में सुरक्षित पहुंच पाए। मुझे पता है कि एलन भविष्य में आप सभी के लिए असुविधा का कारण बन सकता है, इसलिए मैं आपके उदार मार्गदर्शन की सराहना करूंगा। इसके साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं और खुशियां देता हूं। कनपई टीएल कनपई इक्वल्स चीयर्स। भोज की शुरुआत मेरी माँ के टोस्ट से होती है, पता नहीं क्यों बड़े बुजुर्ग मुझे भरोसे की नज़र से देख रहे हैं। मैं एक अच्छे घर में रहने आ गया हूँ, थोड़े से ही सही यहाँ जिंदगी बेहतर हो गई है। इन छोटे छोटे बदलावों के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ताकि हम और भी बेहतर जिंदगी का आनंद ले सकें। हाँ, सिर्फ मेरी माँ ही नहीं, मास्टर मोनिका सान और साहसिक सीनियर्स, मैं उस भविष्य की रक्षा करना चाहता हूँ जहाँ हर कोई हंस रहा हो और जी रहा हो। इसके लिए भी मुझे उस भाग्य के बारे में कुछ करना होगा, मैंने अपना दृढ़ निश्चय दोहराया। अरे एलन लड़के, तुम्हारी माँ बहुत सुंदर है। अरे गुरुजी, अपने शिष्य की माँ पर दबाव डालने की कोशिश मत कीजिए, मैं इसे वापस लेता हूँ, मास्टर को बाहर रखा गया है। लेखक नोट्स, मेरे काम को पढ़ने और समर्थन देने के लिए धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया। मुझे फैंटेसी शैली की विभिन्न विश्व पुनर्जन्म श्रेणी में 9वां स्थान मिला, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि रैंकिंग में यह एक अंक तक पहुंच गया। बी, मैंने इसकी पुष्टि के लिए इसे दोबारा भी जांचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये गर्मजोशी भरे शब्द सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मुझे 5वां स्थान पाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। इसके लिए धन्यवाद, मैंने 5वां स्थान पाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की अपनी इच्छा को फिर से जगाया। क्या मुझे भेदन क्षमता में सुधार करने के लिए कैलिबर कम करना चाहिए या मुझे गोली में बदलाव करना चाहिए? अब मैं लुरदेन हवाई अड्डे से जुड़ी प्रायोगिक सुविधा पर बार बार परीक्षण और त्रुटि विधि का प्रयोग कर रहा हूं, जिसे मैंने गुप्त रूप से बनाया था। लक्ष्य है हथियारों को संशोधित करके एक ही वार में गोबलिन लॉर्ड को परास्त करना। कलशी की गोलियां गोबलिन लॉर्ड को भेद नहीं पाईं। असल में बंदूकें मूलतः इंसानों को मारने के लिए ही बनाई जाती थीं, और इनसे सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब किसी इंसान को गोली लग जाती है और वह शरीर में विकृत अवस्था में रह जाती है। बड़ी कैलिबर यानी गोली का व्यास जितना बड़ा होगा, उसके शरीर से बाहर निकलने की संभावना उतनी ही कम होगी। दूसरे शब्दों में इंसान को मारने की क्षमता यानी ताकत बढ़ जाती है। दूसरी ओर अगर आप कैलिबर छोटा कर देंगे तो यह आसानी से शरीर में घुस जाएगा, इसलिए मारक क्षमता कम होगी। इसके अलावा किसी इंसान को एक ही वार में हराने के लिए आपको मुख्य अंगों पर सटीक निशाना लगाना होगा। अब समस्या यह है कि मैं इंसानों से नहीं बल्कि राक्षसों से निपट रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ओटोम गेम्स की दुनिया में इतना बड़ा युद्ध वाला हिस्सा क्यों शामिल किया गया है। खैर यही तो है, इसलिए इससे निपटने के अलावा कोई चारा नहीं है। कलाशी में मानक 30 कैलिबर की 7.62x39mm की गोली इस्तेमाल होती है, इसलिए मैंने कलाशी के स्पेसिफिकेशन वाली एक और राइफल बनाई और उसका कैलिबर 22 कैलिबर का कर दिया। मैंने उसका नाम निकोव रखा। अब जब मैं सोचता हूँ तो सोवियत संघ ने AK-47 के उत्तराधिकारी के रूप में कुछ ऐसा ही बनाया था। क्या इसे AK-74 कहा जाता था? 22 कैलिबर अमेरिकी सेना के M16 पर अधिक सफल था, लेकिन मैं उस डिजाइन से परिचित नहीं हूँ। पूर्व सोवियत संघ में बने हथियार बाजार में इधर उधर बिकते थे। असली हथियार छूना आसान था और उनका अपना आकर्षण भी था। जैसा कि कहा गया है, कलाशी और निकोब दोनों दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली पूरी तरह से अलग है। अब दूसरे संशोधन की बात करें, यानी गोली में सुधार की। सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वह एक फुल मेटल जैकेट गोली, जिसे FMJ गोली भी कहा जाता है, बनाना जो गोली को कठोर धातु से ढक दे। शुरुआत में मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इसे ढकने के लिए पीतल जुटाना मुश्किल था, लेकिन गोलियों को ढकने के लिए इस मौके का इस्तेमाल करना अच्छा हो सकता है। इससे भी बेहतर कहीं टंगस्टन का भंडार मिल जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन यह इतना सुविधाजनक नहीं है। मैं 2 सप्ताह तक लगातार परीक्षण और त्रुटि करता रहा। अंततः 22 और 30 कैलिबर की दोनों गोलियां लोहे के कोर और पीतल की परत वाली FMJ गोलियां बन गईं। ये इतनी शक्तिशाली थीं कि लगभग 5 मिलीमीटर की लोहे की प्लेट को हल्के से भेद सकती थीं। दोनों बंदूकों में FMJ का उपयोग करने का कारण यह है कि मैं बंदूक की गुहा और थूथन में शीशे के अवशेष को छोड़ने से बचना चाहता था, जो विस्फोट का कारण बन सकता था। अब चलो परीक्षण के लिए गोबलिन कालकोठरी पर चलते हैं। मैं तुरंत ब्यूटर पर चढ़ गया और गोबलिन डंगोन की ओर उड़ चला। तारांकन 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 तारांकन, मैं 1 घंटे से भी कम समय में स्ट्रेसन हवाई अड्डे पर पहुंच गया। हाँ, मैं यहाँ भी चुपके से पहुंच गया। ये स्ट्रेसन गांव से गोबलिन कालकोठरी के दूसरी तरफ बना है, इसलिए इसे खोजा नहीं जा सकेगा। मेरे पास स्ट्रेसन गांव जाने का कोई कारण नहीं है, इसलिए मैं सीधे गोबलिन डंगोन की ओर चल पड़ा। मैं निकोव को पकड़े हुए, कलशी को अपनी पीठ पर रखे हुए आगे बढ़ता हूँ। पहले की तरह लालटेन मेरी कमर पर रखी है और चलते समय छिपाने का कौशल काम कर रहा है। पिछली बार से कम गोबलिन है, लेकिन फिर भी अच्छी संख्या में गोबलिन है। मैं उन सबको हराते हुए आगे बढ़ता हूँ। जब तक मैं बॉस रूम में पहुंचा, मेरे पास लगभग 40 गोबलिन जादुई पत्थर थे। और फिर बॉस रूम में मैं बॉस गैंग से मिलता हूँ, गोबलिन लॉर्ड, 2 हॉबगोबलिन और 2 गोबलिन मैज। पिछली बार की तरह मैंने पहले गोबलिन जादूगरों और हॉबगोबलिन्स को गोली मारकर मार डाला, फिर धुएं के पर्दे का इस्तेमाल करके छिप गया और गोबलिन लॉर्ड के पीछे चला गया। डन 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 डन, क्लिक करें। निकोव की गोलियां खत्म हो गई हैं, लेकिन गोलियां ठीक से घुस गई हैं। गोबलिन लॉर्ड, जिसके शरीर में 6 गोलियां लगी थीं और खून बह रहा था, दहाड़ता हुआ मेरी ओर दौड़ा। मैं एक तरफ कूद जाता हूं और उससे बचता हूं, फिर कलशी पर स्विच करता हूं। डन 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 डन, एक ही गोली गोबलिन लॉर्ड की भौहों के बीच लगी। शायद गोली उसकी खोपड़ी में घुस गई होगी क्योंकि उसकी हरकत रुक गई थी और वह वहीं गिर पड़ा। इस बार मैं बड़े अंतर से जीत गया। जादुई पत्थर इकट्ठा करके मैं भूलभुलैया के केंद्र को छूता हूं और उसे प्रवेश द्वार पर ले जाता हूं। इसके साथ ही मैं दूसरे चक्कर की ओर बढ़ जाता हूं। अगर मैं लापरवाह ना हो तो गोबलिन अब मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं रहे। मैं बिना किसी परेशानी के बॉस रूम पहुंच जाता हूं। इस बार मुझे लगभग 20 गोबलिन जादुई पत्थर मिले। बॉस रूम में कोई नहीं है क्योंकि मैंने उसे पहले ही हरा दिया था। फिर भूलभुलैया के केंद्र को फिर से छूते हुए मैं प्रवेश द्वार की ओर बढ़ता हूं और तीसरे चक्कर की ओर बढ़ता हूं। तीसरे चक्कर में मैं लगभग 20 गोबलिन जादुई पत्थर इकट्ठा करने में कामयाब रहा। जब मैंने बॉस रूम में प्रवेश किया तो मैंने 2 हॉबगोब्लिन, 2 गोबलिन जादूगरों और तीसरी बार गोबलिन लॉर्ड को देखा। चूंकि मुझे रणनीति पता थी, इसलिए मैंने निकोव का उपयोग करके हॉबगोब्लिन और गोबलिन मैजेस में छेद कर दिया और फिर कलशी का उपयोग करके गोबलिन लॉर्ड में छेद कर दिया। फिर जल्दी से जादुई पत्थर इकट्ठा करें और अगले चरण को चुनौती देने के लिए आगे बढ़ें। खैर, अगर मैं इसी तरह कालकोठरी पार करूं तो जो बॉस मर जाना चाहिए था वह हर 2 चक्करों में एक बार जिंदा हो जाएगा। हालांकि स्वाभाविक रूप से जिंदा होने में 1 हफ्ता लगता है, लेकिन अगर आप इसी तरह लगातार पार करेंगे तो बॉस जिंदा हो जाएगा। खेल में अगर आप दूसरे साल की गर्मियों में पवन पर्वत के कालकोठरी में ऐसा करते रहें तो आप बिना पैसे दिए आसानी से मुख्य रास्ता साफ कर सकते हैं। बेशक मैंने इसे खुद नहीं खोजा। जब मैंने इसे खोजा तो विकी पर लिखा था, भविष्य में मेरा लक्ष्य ऐसा करना और नामांकन से पहले स्तर को ऊपर उठाना है। इस तरह मैं लगभग 1 सप्ताह तक हर दिन गोबलिन डंगोन में घूमता रहा और कुल मिलाकर लगभग 100 चक्कर लगाए। मैंने घर लौटते समय गिल्ड को गोबलिन मैजिक स्टोन बेचने का निर्णय लिया, लेकिन मास्टर ने जो बताया उससे मैं आश्चर्यचकित रह गया। अरे एलन बॉय, आपके उपलब्धि रिकॉर्ड में गोबलिन स्लेयर शीर्षक क्यों है? मास्टर, वह क्या है? यह उपाधि उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने 1 वर्ष में 1000 से ज्यादा गोबलिन का शिकार किया हो। क्या आपको गोबलिन से कोई शिकायत है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। नाम एलन, रैंक ई, आयु 12, आशीर्वाद पवन देवता। कौशल छिपाना मूल्यांकन रसायन विद्या पवन जादू एकाधिक मंत्र कोई मंत्र नहीं। निवास स्थान लुरडेन। कब्जा 7014587। स्तर 9। शारीरिक शक्ति ए जादुई शक्ति, सी उपलब्धियां गोब्लिन डंगोन विजेता गोब्लिन स्ले। मैं अभी ऑल्टमेंट में हूं जो ऑक्स कालकोठरी के सबसे नजदीकी शहर है। हालांकि वर्तमान में ऑक कालकोठरी एक अनदेखा कालकोठरी है, इसलिए इसे ऑक वन के पास एक शहर के रूप में जाना जाता है। बेशक वहां बहुत सारे ऑक्स हैं क्योंकि वे कालकोठरी से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन शहर मुसीबतों से सुरक्षित है क्योंकि ऑक्स का नियमित रूप से उनके मांस के लिए शिकार किया जाता है। बेशक चूंकि ऑक्स राक्षस हैं वे इंसानों पर हमला करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इंसानों को होने वाला नुकसान कम होता है क्योंकि लोगों का एक छोटा समूह नियमित रूप से उनसे निपटता है। इस बार मेरी योजना जाहिर है ऑक्स कालकोठरी को पार करने की है। इसके अलावा ऑल्टमेंट के गिल्ड में ऑक्स को वश में करने का एक स्थायी अनुरोध भी है। मैं इसे स्वीकार करूंगा। मैं तुरंत ऑर्क वन की ओर चल पड़ा। ये कालकोठरी माउंट फूजी जैसे एक सुंदर आकार के पहाड़ की तलहटी में स्थित है जो इस जंगल से बहुत दूर तक दिखाई देता है, लेकिन मैं आज वहां नहीं जाऊंगा। आज मैं यहां ऑक्स के खिलाफ अपने आग्नेयास्त्रों की प्रभावशीलता का पता लगाने आया हूं। खेल में ऑक्स को हॉबगोब्लिन से ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन वे बेहद मजबूत थे। दूसरे शब्दों में उनका एचपी ज्यादा है जबकि बचाव कम है। हमेशा की तरह मैंने छिपाना कौशल सक्रिय किया और जंगल में आगे बढ़ा। फिर लगभग एक घंटे तक जंगल में चलने के बाद मुझे एक ऑर्क मिला। सबसे पहले आइए निकोव के साथ शूटिंग करने का प्रयास करें। दन 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 दन, जब मैंने पीछे से चार गोलियां चलाईं तो ऑक आसानी से गिर गया। गोब्लिन डंगोन में अपनी यात्रा के बाद मैंने विभिन्न चीजों के बारे में सोचा और निकोव की गोलियों को एक प्रकार की गोली में बदल दिया जिसे हॉलो पॉइंट बुलेट कहा जाता है। खोखली गोलियां वे होती हैं जो लक्ष्य से टकराने पर विकृत और फैल जाती हैं। अगर ये गोलियां लक्ष्य को भेद देती हैं तो उनकी मारक क्षमता बढ़ जाती है। मेरे पिछले जन्म में भी इस प्रकार की गोली का इस्तेमाल मुख्यतः शिकार के लिए किया जाता था। कलाशी की बड़ी कैलिबर वाली गोली शायद कठोर राक्षसों को भेद नहीं पाती, इसलिए मैंने केवल छोटी कैलिबर वाली निकोव की गोलियों को बदला। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मैं उसके सिर में एक और गोली मारता हूं, फिर उसे तोड़ना शुरू करता हूं। ऑर्क्स बड़े राक्षस होते हैं जिनकी लंबाई 2 मीटर से ज्यादा होती है। ये बहुत बड़ा है, इसलिए सब कुछ ले जाना नामुमकिन है। मैंने सिर्फ जादुई पत्थर और मांस के दुर्लभ हिस्से ही छीले, बाकी कम कीमत के थे, इसलिए मैंने उसे जला दिया। लगभग एक घंटे चलने के बाद मेरी मुलाकात एक और ऑर्क से हुई। अब कलशी की बारी है। डॉन 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 डॉन, पहले की तरह उसी तरह चार गोलियां। लगता है कम से कम एक गोली लगी है, लेकिन गोली लगने के बाद भी वह हिल सकता है। वह गुस्से में आकर मेरी तरफ दौड़ा। डॉन 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 डॉन, मैंने आते हुए ओर पर कुछ गोलियां चलाईं। उनमें से एक उसके सिर पर लगी जिससे वह आगे की ओर मुंह करके गिर पड़ा। जब वह हिलना बंद हो गया तो मैं उसके पास गया। गोली उसके सिर में तेजी से लगी। नतीजा उम्मीद के मुताबिक हुआ। फिलहाल सामान्य शिकार के लिए निकोव और उन कठिन दुश्मनों के लिए कलशी का इस्तेमाल करना एक अच्छा संतुलन लगता है जिन्हें निकोव की गोलियां भेद नहीं पाती। बाद में इसमें बदलाव हो सकता है। मैंने जादुई पत्थर निकाला और इस बार जितना संभव हो सके उतने खाने योग्य भाग और त्वचा एकत्रित की, फिर शहर लौट आया। तारांकन 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 तारांकन। अगले दिन मैं ऑर्क्स के कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर आया। ये कालकोठरी कुल 100 परतों वाली एक विशाल कालकोठरी है और इसकी खासियत यह है कि सभी मंजिलों पर फ्लो बॉस रूम है। केवल ऑर्क्स और उनके विकसित राक्षस ही दिखाई देते हैं। कोई भव्य खजाना नहीं है और न ही कोई बड़ा जाल है। मेरी याददाश्त के अनुसार रास्ते में मिलने वाले खजाने असामान्य श्रेणी के हैं, लेकिन आखिरी बॉस को हराने पर आपको एक महाकाव्य श्रेणी की वस्तु मिल सकती है। वह एपिक क्लास आइटम निश्चित रूप से सिर्फ एक इवेंट आइटम है और यह एक सजावट रही होगी जिसका लक्ष्य की पसंद बढ़ाने के अलावा कोई मूल्य नहीं है। मुझे याद है कि मैंने इवेंट स्टिल्स हासिल करने के लिए इसे इकट्ठा किया था। TL इसका मतलब इवेंट इलस्ट्रेशन है। अब मैं सबसे निचली परत पर निशाना साधता हूं और सबसे छोटे रास्ते से तुरंत आगे बढ़ता हूं। इस बार भी मैं छिपाना कौशल और निकोव का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा हूं। पराजित ऑक मास को छोड़कर केवल जादुई पत्थर इकट्ठा करके मैं आगे बढ़ता हूं। इस तरह मैं पहली मंजिल पर बॉस रूम में पहुंच गया। यहां 5 ऑर्क्स बॉस थे। उनसे निपटने के लिए सिर्फ निकोव ही काफी था। गोब्लिन डंगोन के विपरीत यहां का बॉस उस पदानुक्रम में दिखाई देने वाले राक्षसों से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। जब मैं पराजित ऑक जादू पत्थर इकट्ठा करता हूं तो मैं अगले स्तर पर चला जाता हूं। जैसे जैसे वे पदानुक्रम में ऊपर जाते गए दिखाई देने वाले ऑक और भी शक्तिशाली होते गए। ऑक के बाद उच्च ऑक जादूगर, ऑक पुजारी, ऑक सेनापति और आखिरी मंजिल के प्रमुख ऑक राजा हैं। खास तौर पर जनरल और राजा परेशान करने वाले हैं। जनरल एक बहुमुखी योद्धा है जिसकी शारीरिक क्षमता उत्कृष्ट है और वह जादू भी करता है। और राजा ऑर्क्स का राजा है जो जनरल से भी ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा बुद्धिमान है और अपने अधीनस्थों को संगठित कार्रवाई करने का आदेश भी देता है। मैं सबसे निचले बॉस रूम में पहुंचा जहां ऑक किंग इंतजार कर रहा था। यहां बॉस एक ऑक किंग और दो जनरल हैं। इसके अलावा 10 अधीनस्थ जिनमें हाई मैज और प्रीस्ट शामिल हैं बेतरतीब ढंग से प्रकट होंगे। इस बार 4 उच्च, 2 जादूगर और 4 पुजारी हैं। गो, राजा ने मुझे देखा जिसने बॉस रूम का दरवाजा खोला और अपनी तलवार उठाई। मैंने शांति से पुजारी पर निकोब दागा। जब उसकी गोलियां खत्म हो गईं, तो मैंने छिपने के लिए एक धुएं का पर्दा बनाया। फिर छिपाना कौशल का उपयोग करके छिपने के बाद मैं जादूगरों और पुजारियों की ओर बढ़ा और पहले निकोब दाग कर उनसे सामान्य तरीके से निपटा और फिर उच्चों से भी निपटा गया। अब केवल 3 ही बचे हैं। एक जनरल ने आग का तीर छोड़ा। मैं जल्दी से उसे चकमा देने के लिए बगल में कूद गया। तभी एक और जनरल ने आग का तीर छोड़ा जिससे मैं इस बार बच नहीं पाया। मैं हवा को दूर ले जाने के लिए पवन जादू कौशल का उपयोग करता हूं और निकोब को तेजी से फायर करता हूं। दन 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 दन, एक सेनापति के बाएं कंधे पर चोट लगी। वह कराह उठा मानो उसे बहुत दर्द हो रहा हो। राजा ने सेनापति को छुआ और उपचार का जादू चलाया। इसी बीच एक अन्य जनरल ने मुझ पर आग का तीर छोड़ा। जैसा कि अपेक्षित था, जब तक राजा जीवित है तब तक कुछ भी करना कष्टकारी है। मैं छिपाना कौशल को फिर से सक्रिय करने और छिपने के लिए फिर से स्मोक स्क्रीन का उपयोग करता हूँ। राजा और सेनापति ने एक ऐसी पंक्ति बनाई जिससे उनकी पीठ एक दूसरे से सटी रहे। यह एक ऐसी क्रिया है जिससे पता चलता है कि वे समझ गए हैं कि मैं उनके पीछे से हमला करने आऊंगा। लेकिन इस बार मेरा लक्ष्य वह नहीं था। मैंने किंग के चेहरे पर एक मिर्च से भरा पानी का गुब्बारा फेंका जिससे गोब्लिन लॉर्ड अंधा हो गया। गुगा, जब राजा ने अपनी आंखें नीचे कर ली तो सेनापति कांप उठे। मैंने मौका नहीं गंवाया और दोनों जनरलों पर निकोब से तब तक गोलियां चलाता रहा जब तक मेरी गोलियां खत्म नहीं हो गईं। जनरल अब आगे नहीं बढ़ रहे थे। राजा मुझे खून की प्यास से देख रहा है। ऐसा लग रहा है मानो उसकी आंखों पर बंदी पट्टी खुल गई हो और उसे कोई नुकसान न पहुंचा हो। हालांकि निकोब की गोली राजा को लगी लेकिन वह उसकी त्वचा को भेद नहीं पाए। शायद उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह भेद सके। मैं कलशी पर चला गया और उसी क्षण राजा मेरी ओर दौड़ पड़ा। अब तक की स्थिति को देखते हुए शायद उसने सोचा होगा कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा। यद्यपि वह राक्षस है फिर भी उसके पास महान बुद्धि है। हालांकि कलशी की गोलियां FMJ गोलियां हैं जो भेदने की शक्ति में माहिर हैं। मैंने कलशी को पकड़ लिया, राजा के सिर पर निशाना साधा और उसे ट्रिगर कर दिया। दन 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 दोसा तसु। इस तरह राजा एक लाश बन गया। ठीक है, इसके साथ ही यह खत्म हो गया। मैंने जादुई पत्थर वापस पा लिया और कालकोठरी कोर वाले कमरे की ओर चल पड़ा। कालकोठरी कोर के सामने एक खजाने का संदूक है। जब मैंने धीरे से खजाने का संदूक खोला तो उसमें एक कंगन था। नाम, प्रजनन कंगन। विवरण, वंशजों की समृद्धि के लिए प्रार्थना वाला एक कंगन। इस कंगन को धारण करने वाली महिलाओं में संतान प्राप्ति की संभावना अधिक होती है। ग्रेड, महाकाव्य। कीमत, 10 बिलियन सेंट। ओह, बिल्कुल सही, मुझे याद आ गया, यह एक इवेंट आइटम है। क्या यही ओर्क्स प्रकृति का प्रतीक है? टीएल, सुकोमी का अनुवाद करने की पूरी कोशिश की, यहाँ कच्चा अनुवाद है। अगर इसे बदलने की आवश्यकता हो तो मुझे टिप्पणी करें। मेरे पिछले जन्म की यादें ताज़ा हो गई हैं जब मैं ऐसी तसुक्कोमी जोड़ता था। हालांकि ये चीज़ बहुत कीमती है, इसे भुनाना मुश्किल होगा। चलो इसे सबसे बुरी स्थिति के लिए धन का स्रोत मान लेते हैं। जब मैंने प्रजनन क्षमता वाला ब्रेसलेट उठाया तो मैंने कालकोठरी कोर को छुआ और बाहर चला गया। मैं अंततः 13 वर्ष का हो गया हूँ। लगभग आधे साल तक ऑक्डेंगोन में तेज गति से चक्कर लगाने के कारण ऑक शिकार की उपलब्धियां बढ़ी हैं, जिसके परिणामस्वरूप मुझे ऑक्सलेयर का खिताब मिला है। इसकी बदौलत मेरी रैंक बढ़कर डी हो गई और लेवल भी 23 हो गया। मैंने सुना है कि रैंक सी तक पहुंचने के लिए मुझे एस्कॉर्ट रिक्वेस्ट स्वीकार करनी होगी, लेकिन अभी मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा मैंने अपने वरिष्ठों के पार्टी निमंत्रण को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मैं कुछ समय के लिए अकेले प्रशिक्षण लेना चाहता हूँ। वैसे ऐसा लगता है कि इस बात को लेकर काफी हंगामा हुआ है कि हाल ही में ऑल्टमेंट में ऑक्स दिखना बंद हो गए हैं। खैर, मैं यह मानना चाहता हूं कि यह मेरी गलती नहीं है। एल्वेन शहद के नियमित व्यापार से भी मैंने पैसे बचाए हैं। अब न्यूनतम लक्ष्य राशि तक पहुंचने के लिए मुझे 5 मिलियन और चाहिए। नाम, एलन। रैंक, डी। आयु, 13। आशीर्वाद, पवन देवता। कौशल, छिपाना मूल्यांकन रसायन विद्या पवन जादू एकाधिक मंत्र कोई मंत्र नहीं। निवास स्थान लुरदेन, धन 15,457,109, स्तर 23, ताकत डी जादुई शक्ति, बी उपलब्धियां गोब्लिन डंगोन विजेता गोब्लिन स्लेयर ऑक्सलेयर टीएल, मुझे नहीं पता कि क्यों लेकिन लेखक ने ऑक डंगोन कॉन्करर उपलब्धि को नहीं जोड़ा। इसके अलावा एल्फ गांव के लोग अच्छा कर रहे थे और हवाई अड्डे का रख रखाव भी अच्छा था। रनवे सिर्फ 300 मीटर लंबा है क्योंकि मैं जंगल से ज्यादा नहीं गुजरना चाहता था। इसके अलावा मुझे लैंडिंग की भी चिंता नहीं है क्योंकि ब्यूटर का ब्रेक फंक्शन मजबूत किया गया है। इसके अलावा हवा का रुख टेक ऑफ के समय मध्यम गति की हवा प्रदान करके मदद करता है, इसलिए VTOL संभव है। वैसे गांव में तो यही लगता है कि इसका इस्तेमाल आमतौर पर बच्चों के खेल के मैदान और तीरंदाजी के अभ्यास के लिए होता है। गांव में भी कोई इसकी शिकायत नहीं करता। अब मैं ऑक डंगोन में अपना स्तर बढ़ाने में सक्षम नहीं हूं, इसलिए मैं एक उच्च कठिनाई वाले डंगोन को चुनौती देने जा रहा हूं। अगली चुनौती जिस कालकोठरी को देने जा रहा हूं वह है पवन पर्वत की कालकोठरी। खेल में अनुशंसित कैप्चर स्तर 30 है, ऑक कालकोठरी 15 थी और उड़ते हुए ड्रैगन की घाटी 25 है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना मुश्किल है। वैसे पवन पर्वत की कालकोठरी एक प्रसिद्ध कालकोठरी है जिसे पहले ही खोजा जा चुका है और प्रसिद्ध साहसी लोगों द्वारा एक कब्जा दौड़ आयोजित की गई थी। अब तक सबसे गहरी मंजिल पार करने का रिकॉर्ड केवल 8वीं मंजिल तक ही है। इसका इतिहास कई प्रसिद्ध साहसी लोगों को निगलने का रहा है। खेल में कुल 30 मंजिलें थीं और यह एक रहस्यमय जगह थी जहां जमीन के नीचे होने के बावजूद खाली आसमान था। जो राक्षस बाहर आते थे वे सब आसमान में उड़ने वाले राक्षस थे। इसके अलावा जगह जगह जाल भी थे जिन्हें बिना हवा के जादू के पार नहीं किया जा सकता था। मुझे इस तथ्य की याद आ गई कि मेरे पिछले जीवन में जब मैंने गेम ओवर किया था तब मैंने बिना ये जाने कि मैं इसे तब तक नहीं पकड़ सकता जब तक कि मुझे मार्क्स रूट या वैली ऑफ द फ्लाइंग ड्रैगन में बुक ऑफ द विंड मैजिक नहीं मिल जाता। कहानी को बाद के लिए छोड़ते हुए खास बात यह है कि इस कालकोठरी में आपको 2 विकल्प अंगूठी मिल सकती है और सबसे नीचे बॉस को वश में करने पर मिलने वाली स्काई नाइट तलवार है। जैसा कि नाम से पता चलता है सब्स्टिट्यूट रिंग एक ऐसी वस्तु है जो उपयोगकर्ता को केवल एक बार पुनर्जीवित कर सकती है भले ही वह मर जाए, और स्काई नाइट तलवार एक ऐसी तलवार है जो नाइट का आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति द्वारा धारण किए जाने पर आशीर्वाद को स्काई नाइट में बदल देती है। जब आप स्काई नाइट बन जाते हैं तो पवन जादू प्राप्त करने की आपकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। खेल में मैंने शाही शूरवीरों के सरदार के बेटे लियोनार्डो को जगाने के लिए इस वस्तु से सुसज्जित किया था, लेकिन मुझे याद है कि पवन जादू ने अपनी कम जादुई शक्ति के कारण कोई खास भूमिका नहीं निभाई थी। वैसे इस कालकोठरी का आखिरी बॉस ब्लिजार्ड फीनिक्स है। अगर मैं सामान्य रूप से लड़ता हूं तो यह एक मजबूत दुश्मन होगा जिसे अब मैं शायद ही हरा पाऊं। बर्फीला तूफान फीनिक्स एक भयानक राक्षस है जो बहुत ऊपर से एक तेज बर्फीला तूफान उड़ाता है जिससे आपकी दृष्टि और शारीरिक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसके अलावा यह बारिश के ओलों की तरह काफी दूर से एक तरफा बर्फ का तीर भी चलाता है। हालांकि कालकोठरी बॉस रूम का आकार सीमित है इसलिए यह बहुत एक तरफा नहीं है। खेल में शाही मार्ग के दौरान चाल ये थी कि क्राउन प्रिंस कार्लहेंस के शक्तिशाली ज्वाला जादू से उसके कमजोर बिंदुओं पर हमला करके उसे हराया जाए, और अगर आप उसके काफी करीब पहुंच जाते हैं तो उसकी रक्षा शक्ति ज्यादा नहीं होती इसलिए आप उसे शारीरिक हमले से भी हरा सकते हैं। अगर शारीरिक हमला हो भी जाए तो मेरी बंदूक भी उसे झेलने में सक्षम होनी चाहिए। इसी सोच के साथ मैंने पवन पर्वत की कालकोठरी को चुनौती देने का फैसला किया। तारांकन 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 डी रैंक का एडवेंचर है एलन, वैसे सोलो तो जानलेवा है उस उम्र में ऐसा ही कुछ। खैर कोई बात नहीं, तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन अगर तुम मरना नहीं चाहते तो सिर्फ पहली परत के आसपास ही देखो। मैंने अपना गिल्ड कार्ड दिखाया और ज़ीबेन स्थित गिल्ड में मुफ्त प्रवेश के लिए पंजीकरण कराया जो पवन पर्वत के कालकोठरी के सबसे नजदीकी शहर है। इस कालकोठरी का प्रबंधन गिल्ड द्वारा किया जाता है और इसमें केवल रैंक डी या उससे ऊपर के रैंक पर ही प्रवेश किया जा सकता है। आप बिना अनुमति के भी इसमें प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर नियंत्रणाधीन कालकोठरी में प्राप्त कोई वस्तु किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कालकोठरी से बाहर ले जाई जाती है जिसने मुफ्त प्रवेश के लिए पंजीकरण नहीं कराया था तो उस व्यक्ति को चोर माना जाएगा। और इस कालकोठरी को आमतौर पर ए रैंक और बी रैंक के साहसी लोग पार्टियों में चुनौती देते हैं। मेरे जैसा एक 13 साल का डी रैंक वाला बच्चा चुनौती देने आया तो ऐसा लगा जैसे वह एक लापरवाह और दुस्साहसी लड़का था जिसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन मैं इसे पार करके इसे कैद कर लूंगा। बल्कि मैं इस कालकोठरी में तेज रफ्तार से चक्कर लगाता रहूंगा जब तक कि मैं स्कूल में दाखिल ना हो जाऊं। बेशक अगर मैं और ज्यादा अलग दिखूंगी तो अप्रत्याशित स्थितियां पैदा होंगी, इसलिए मैं इसे कैद करने के बाद रिपोर्ट नहीं करूंगी। तारांकन 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 फिर मैं शहर छोड़कर कालकोठरी में आ गया। पहली मंजिल भी बाकी कालकोठरियों से अलग नहीं है। गुफा से एक खून चूसने वाला पिशाच चमगादड़ निकलता है। ये लगभग 1 मीटर लंबा एक विशाल पिशाच चमगादड़ है और एक भयानक राक्षस है जो काटते ही शरीर का सारा खून चूस लेता है। जैसे जैसे मैं अपने कंसीलमेंट का उपयोग करते हुए आगे बढ़ा, कौशल, लगभग 5 पिशाच चमगादड़ छत से लटक रहे थे। यहीं से नए हथियार शॉटगन की भूमिका शुरू होती है। ये कलशी के परिणामों से बनी एक शॉटगन है। मैंने इसका नाम साइगा रखा है। इसका मूल निश्चित रूप से प्रसिद्ध रूसी शॉटगन साइगा -12 से है। बेशक इसमें एक जादुई बंदूक की सामग्री है जो सेगा से पूरी तरह अलग है, लेकिन ये देखने में काफी हद तक सेगा जैसी ही है। सेगा को शॉटगन के रूप में ठीक से काम करने में काफी परेशानी हुई, लेकिन इस बार यह अंततः पूर्ण हो गया और वास्तविक युद्ध के लिए तैयार हो गया। दून दून, जब मैंने ट्रिगर दबाया तो मैं वैम्पायर चमगादड़ों को आसानी से हरा पाया। यह जरूरत से ज्यादा लग रहा है, लेकिन शॉटगन फिर भी कमाल की है। पिशाच चमगादड़ों के जादुई पत्थर इकट्ठा करने के बाद मैं जल्दी से अगली मंजिल की ओर चल पड़ा। दूसरी मंजिल से, हालांकि वह जमीन के नीचे है, वहां से रोशनी है और आसमान भी दिखाई देता है। ये वाकई एक रहस्यमयी जगह है। इसके अलावा यहां से पवन पर्वत कालकोठरी का कालकोठरी जैसा क्षेत्र जहां कई पक्षी राक्षस निकलते हैं जारी है। अपने हाथ में सेगा लेकर मैं कालकोठरी में गहराई तक चला गया। अब से अगर मेरे पास सेगा है तो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। सेगा ने वास्तविक युद्ध में अपने पदार्पण पर इतनी बड़ी सफलता दिखाई है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। यद्यपि इसकी मारक क्षमता कम है तथा यदि निशाना थोड़ा सा भी चूक जाए तो भी, जैसा कि अपेक्षित था, शॉटगन शिकार के लिए एक आदर्श हथियार है। इसकी बदौलत मैं आसानी से आगे बढ़ पाया और अब मैं 28वीं मंजिल पर पहुंच गया हूं। इस कालकोठरी में 8 बनावटी मंजिलें हैं जहां सफलता पाने के लिए पवन जादू बेहद जरूरी है। इस मंजिल पर 10 तैरते हुए टापू हैं, लेकिन अगले तैरते हुए टापू तक पहुंचने के लिए उस तैरते हुए टापू पर एक सेब जितने छोटे लक्ष्य को मारने के लिए पवन जादू का इस्तेमाल करना जरूरी है। फिर आपको उस टापू पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। आप इन तैरते हुए टापुओं के चारों ओर सही क्रम में घूमकर अगली मंजिल तक पहुंच सकते हैं। वैसे अगर आप क्रम में कोई गलती करते हैं तो या तो आपको इस मंजिल के प्रवेश द्वार पर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा या आप सीधे नीचे गिर जाएंगे। टीएल, मुझे लगता है कि अंत में मंजिल ही तय करेगी कि क्रम सही है या नहीं। ये खेल में एक घटिया कालकोठरी के रूप में भी मशहूर था। दरअसल विकी के बिना यहां से निकलना काफी मुश्किल होता। वैसे अगर तुम गिर गए तो खेल तुरंत खत्म हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं गिर गया तो मेरी जिंदगी का खेल खत्म हो जाएगा। ये सोचकर मैं सावधानी से टापुओं को पार करता हूँ। सभी हमलावर राक्षसों को साइगा से मार गिराया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से पराजित राक्षस वैसे ही गिर जाते हैं। इस तरह मैं 5वें तैरते हुए टापू पर पहुंच गया। दरअसल यहाँ एक छिपी हुई चाल है। इस टापू के उत्तर की ओर द्वीप के अंदर जाने के लिए एक प्रवेश द्वार है। टीएल, अंदर से मतलब भूमिगत है। ये प्रवेश द्वार काफी परेशान करने वाला है। हर टापू के साथ यह छोटा होता जाता है, यानी जितने टापू आप पार करते हैं प्रवेश द्वार उतना ही छोटा होता जाता है। प्रोडक्शन टीम के बुरे इरादों को कोसते हुए मुझे अपनी पिछली जिंदगी की यादें ताजा हो गईं। अब आमतौर पर योजना एक हुक वाली रस्सी तैयार करके चट्टान के किनारे तैरते टापू के किनारे नीचे जाने की होती है, लेकिन मेरे पास एक महंगा चीट स्किल कीमिया है। अगर मैं कीमिया कौशल की मदद से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बना दूं तो कोई खतरा नहीं होगा। हाँ, अगर आप इसके लिए पैसे दे सके तो ये खेल में भी संभव है। इस तरह मैं आसानी से टापू के अंदर घुस गया। अंदर एक सीधा रास्ता था जिसमें एक जगह छोटी वेदी जैसी दिखती थी, और जिस वेदी पर मैं पहुंचा वहां एक जोड़ी प्रतिस्थापन अंगूठी स्थापित थी। खेल में एक दृश्य था जहां लक्षित पात्र नायिका एमी की उंगली में सब्स्टिट्यूट रिंग पहनाता है और कहता है, अगली बार मैं असली वाली देना चाहता हूं। प्रत्येक लक्षित पात्र के लिए इवेंट स्टिल्स भी तैयार किए गए थे, इसलिए यह एक बहुत ही प्रसिद्ध इवेंट था। ये घटना खलनायक की बेटी की निंदा वाली घटना के बाद आती है, इसलिए मुझे इसकी परवाह नहीं कि इस घटना का क्या होता है। चूंकि मेरी सुरक्षा प्राथमिकता है, इसलिए शुक्र है कि मैंने दोनों विकल्प रिंग ले ली। टीएल, मैं ज्यादा कुछ खराब नहीं करना चाहता, लेकिन एक तरह से रिंगों ने अपने आयोजन का उद्देश्य पूरा कर दिया। उनमें से एक को अपने बाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर रखकर मैं जल्दी से वापस आ गया। इससे मुझे सबसे बुरी स्थिति के लिए बीमा मिल गया। तारांकन 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 तारांकन, अंततः मैं बॉस रूम के सामने पहुंच गया। अंदर ब्लिजर्ड फीनिक्स है, एक खतरनाक राक्षस जिसका सामना आप कभी भी बाहर नहीं करना चाहेंगे। मैं बंदूकों की हालत जांचता हूं और साइगा की गोलियों को स्लग गोलियों से बदल देता हूं। स्लग गोलियों को भालू नाशक भी कहा जाता है। हालांकि इनकी मारक क्षमता ज्यादा नहीं होती, लेकिन अगर इन्हें कम दूरी से दागा जाए तो इनकी ताकत बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा इस बार मैंने हमलों को रोकने के लिए एक पॉलीकार्बोनेट ढाल भी बनाई। अब सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो मैं बॉस के कमरे में घुस गया। बॉस रूम लगभग 100 मीटर की परिधि वाला एक विशाल गुंबदनुमा कमरा है और बर्फ से ढका ब्लिजर्ड फीनिक्स दिव्य आभा बिखेरता हुआ इंतजार कर रहा था। क्या जैसे ही दरवाजा खुला, अचानक से बर्फीला तूफान फीनिक्स मेरी ओर, या यूं कहें कि जिस दरवाजे से मैं अंदर आ रहा था उसकी ओर बर्फीला तूफान बरसा दिया। मैं हमेशा की तरह अपने छिपाने कौशल से छिप रहा हूं, लेकिन फिलहाल दरवाजा खुलने पर एक अचानक हमले की उम्मीद करते हैं। लगता है यही ब्लिजर्ड फीनिक्स का तरीका है। ढाल के साथ बर्फीले तूफान से गुजरते हुए मैं जल्दी से बर्फीले तूफान के रास्ते से बाहर निकल गया। इसके तुरंत बाद बर्फीले तूफान फीनिक्स ने उस स्थान पर बर्फ का तीर चलाया जहां मैं था। इस बीच मैं चुपके से ब्लिजर्ड फीनिक्स के पास जाता हूं और उसे साइगा की गोलियों से मार गिराता हूं। दून 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 दून। मैंने 4 बार गोली चलाई, लेकिन 1 बार गोली लगने के बाद उसने मुझे देख लिया और खुद को दूर कर लिया। हालांकि एक प्रतिक्रिया हुई। ब्लिजर्ड फीनिक्स के शरीर से नीला खून टपक रहा है और मुझे आश्चर्य हुआ कि फर्श पर गिरी खून की बूंदें पहले से ही जम चुकी थीं। मैं स्मोक स्क्रीन से छिपाव कौशल के गोल्डन कॉम्बो को सक्रिय करता हूं, लेकिन बर्फीले तूफान फीनिक्स ने तुरंत ही मुझ पर बर्फबारी का हमला कर दिया। मैं सीधे प्रहार से बचने के लिए ढाल का उपयोग करता हूं और रास्ते से हट जाता हूं, लेकिन बर्फीले तूफान फीनिक्स ने मुझ पर, जो बर्फीले तूफान से बच निकला था, एक के बाद एक बर्फ के तीर चलाए। ऐसा लगता है कि मैं छिपाने कौशल से ठीक से छिपने से पहले ही बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया। मैंने उससे बचने के लिए किनारे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन मैं बच नहीं सका। इसलिए मैंने तुरंत ढाल आगे की ओर रखी और बर्फ के तीर का सीधा सामना किया। गगा 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 गगा। जब बर्फ का तीर ढाल से टकराया तो जोर की आवाज हुई। ढाल बर्फ के तीर के प्रहार को झेल तो गई, लेकिन जल्दी ही जम गई। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। ऐसी खराब स्थिति में मैंने एक नया कदम उठाया। फौज। मैं ढाल के बगल में छिपने के लिए पर्याप्त आकार का एक पत्थर गढ़ता हूँ, फिर जमी हुई ढाल को छोड़ देता हूँ और पत्थर के पीछे छिप जाता हूँ। फिर जब मैं एक नई ढाल बनाता हूँ और उसे सुसज्जित करता हूँ, तो मैं छिपाना कौशल को सक्रिय करता हूँ और चलना शुरू करता हूँ। बर्फीला तूफान फीनिक्स को यह आभास हो गया है कि मैं चला गया हूँ और वह मेरा पता ढूंढने के लिए इधर उधर उड़ रहा है। मैं आखिरी क्षण तक छिपना चाहता हूँ और सिर पर गोली मारने का लक्ष्य रखना चाहता हूँ। इसके बाद बर्फीला तूफान फीनिक्स ने बर्फ के तूफान के साथ हमला करना शुरू कर दिया, शायद इसलिए क्योंकि वह मुझे ढूंढ नहीं पाया था। चूंकि मेरे ऊपर बर्फीला तूफान आने वाला था, इसलिए मैंने जल्दी से अपने सामने छिपने के लिए एक चट्टान बना ली। लानत है, बर्फीले तूफान फीनिक्स ने मुझे देखा और एक बर्फ का तीर चलाया। रेंज से बाहर की जबरदस्त हमला करने की क्षमता, लेकिन जब बात दूर से गोली मारने की आती है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं साइगा से निको पर स्विच करता हूँ, फिर ढाल को सामने पकड़कर गोली चलाना शुरू करता हूँ। दन दन, फिर चट्टान के पीछे छिप जाओ, फिर चट्टान के पीछे से ब्लिजर्ड फीनिक्स पर गोली चलाओ। मैं हमले के इस पैटर्न को गंभीरता से दोहराता हूँ। अचानक बर्फ का तीर आना बंद हो गया। जब मैंने छिपाव कौशल को सक्रिय किया और चट्टान के पीछे से बाहर कूद गया, तो मैंने वहां ब्लिजर्ड फीनिक्स की आकृति देखी जो जमीन पर लेटी हुई हिल रही थी। ऐसा लगता है कि इसके कमजोर बिंदुओं पर चोट लगी है। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और निको से ब्लिजर्ड फीनिक्स के सिर पर गोली मार दी। ठीक है, यह एक करीबी मुकाबला था, लेकिन मैं इसे हराने में कामयाब रहा। मैं इसे तोड़ना शुरू करता हूँ। जब आप इसे इस तरह से देखते हैं तो ब्लिजर्ड फीनिक्स बहुत सुंदर है। हालांकि मुझे जो खूबसूरत बर्फीले नीले पंख लग रहे थे, उनमें से ज्यादातर बर्फ से बने थे। मैंने बर्फ के पंखों को छीलने की कोशिश की, लेकिन छिले हुए पंख पहले ही पिघलने लगे थे। दुर्भाग्यवश इसे सामग्री के रूप में उपयोग करना असंभव प्रतीत होता है। फिर भी ये काफी बड़ा है, इसकी कोई मदद नहीं की जा सकती। मैं ब्लिजर्ड फीनिक्स को वैसे ही संभालता हूँ जैसे मैं दूसरे राक्षसों को संभालता हूँ। ऐसा करते हुए मुझे इसके दिल के पास एक जादुई पत्थर मिला, इसलिए मैंने उसे बाहर निकाल दिया। इसके बाद जब मैंने धीरे धीरे पिघलते बर्फ के पंखों को देखा तो मुझे कुछ ध्यान आया। ओह, पूंछ के पंखों में बर्फ के अलावा भी कुछ है, और पंखों पर भी। पिघले हुए ब्लिजर्ड फीनिक्स के अवशेषों से मुझे एक सुंदर बर्फ नीला पूंछ पंख और 2 पवन पंख प्राप्त हुए। मांस का रंग किसी कारण से बहुत खराब हो गया है, इसलिए इसे छोड़ दें। यहां तक कि खेल में भी यह नहीं बताया गया था कि इसे खाया जा सकता है। मैंने पंखों की हड्डियां भी इकट्ठी की और बॉस रूम की ओर चल पड़ा। वहां परिचित भूलभुलैया का केंद्र, खजाने का संदूक और चबूतरा रखा हुआ था। मैंने खजाने का संदूक खोला और स्काई नाइट तलवार ले ली। और यह चबूतरा एक जादुई पत्थर का सिंथेसाइजर है। इस यंत्र के अस्तित्व के कारण ही मैं यहां आना चाहता था। आखिरकार यह एक धोखा देने वाला उपकरण है जो इस दुनिया की सामान्य समझ को तोड़ता है। यह उपकरण एक ही प्रकार के जादुई पत्थरों को संश्लेषित करके उनका आकार बढ़ा सकता है। खेल में एक ही आकार के दो जादुई पत्थरों को एक आकार बढ़ा करके संश्लेषित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, एक छोटा पत्थर बनाने के लिए दो छोटे जादुई पत्थरों की जरूरत होती है, एक मध्यम पत्थर बनाने के लिए चार, एक बड़ा पत्थर बनाने के लिए आठ और एक विशाल पत्थर बनाने के लिए 16 छोटे जादुई पत्थरों की। उदाहरण के लिए, अगर आप एक साधारण भूत को हरा देते हैं तो आपको एक छोटा जादुई पत्थर मिल सकता है। इसकी कीमत लगभग 1500 से 2000 सेंट होती है, लेकिन बड़े आकार का पत्थर 30,000 सेंट में बिकता है। इस उपकरण से आप केवल 12,000 से 16,000 सेंट की लागत से 30,000 सेंट की कीमत की वस्तु बना सकते हैं। इसलिए अब तक संग्रहित किए गए गोब्लिन और ऑक जादू के पत्थरों को यहां संश्लेषित करने के बाद बेचा जाएगा। इस तरह मैंने इस कालकोठरी को पार करते समय प्राप्त जादुई पत्थरों को कुर्सी पर रखा और उन्हें संश्लेषित किया, फिर प्रवेश द्वार पर स्थानांतरित कर दिया। मैं आखिरकार 15 साल का हो गया हूँ। मेरी हालत अभी कुछ ऐसी है। नाम एलन, रैंक सी, आयु 15, आशीर्वाद पवन देवता, कौशल छिपाना, मूल्यांकन रसायन विद्या पवन जादू एकाधिक मंत्र कोई मंत्र नहीं, निवास स्थान लुरडेन, कब्जा 34519, 728, स्तर 37, ताकत सी, जादुई शक्ति ए, उपलब्धियां गोब्लिन डंगॉन विजेता, गोब्लिन स्लेयर, ऑक्स स्लेयर, सबसे युवा सी रैंक। मैं सबसे कम उम्र का सी रैंक एडवेंचरर बन गया और प्रवेश और ट्यूशन फीस के लिए 2 करोड़ रुपये चुकाने के बाद भी मेरे पास अभी भी काफी बचत होगी। इसी पद की बदौलत मैं इतना पैसा कमा पाया। ये कहा जा सकता है कि एक एडवेंचरर के रूप में मेरा जीवन काफी सफल रहा है। शुरुआत में मेरा इरादा अपनी रैंक को सी तक बढ़ाने का नहीं था, लेकिन जब मेरे गिल्ड कार्ड में ऑक्सलेयर की उपलब्धि सामने आई तो अधिकारियों का दबाव बढ़ गया। इसके अलावा मास्टर मुझ पर सबसे कम उम्र का सी रैंकर बनने के लिए दबाव डाल रहे थे, इसलिए जब मैंने 14 साल की उम्र में एस्कॉर्ट और चोरों को काबू करने का अनुरोध स्वीकार किया तो मेरी रैंक बढ़ गई। इसके अलावा मेरा स्तर 37 है। खेल की तुलना में यह एक ऐसा स्तर है जहां आप अनास्तासिया के साथ अंतिम लड़ाई जीत सकते हैं जो अंधेरे के आगे झुक जाती है। अब तक मेरी तलवारबाजी ने युद्ध में कोई भूमिका नहीं निभाई थी, लेकिन गुरु से मैंने जो तलवारबाजी की ट्रेनिंग ली थी वह जरूरी थी। उसकी बदौलत मैं तलवारबाजी की प्रवेश परीक्षा पास करने में कामयाब रहा, हालांकि मैं परीक्षक को हरा नहीं पाया। कहने की जरूरत नहीं कि मैं जादू की परीक्षा में पास हो गया, बस अपनी ताकत को इस तरह से समायोजित करना ज्यादा मुश्किल था कि मैं ज्यादा अलग न दिखूं। वैसे मैं पवन जादू को छोड़कर अपने सभी कौशल और आशीर्वाद छिपाने के लिए छिपाने कौशल का उपयोग करता हूं। ये देखते हुए कि अगर इतने सारे कौशल वाला कोई छात्र स्कूल में दाखिला लेता है तो वह निश्चित रूप से किसी न किसी मुसीबत में फंस जाएगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि खलनायक बेटी की निंदा वाली घटना तक मुझे अलग नहीं दिखना चाहिए। उस समय तक मूल से अलग सिर्फ मूल्यांकन का स्क्रॉल से जुड़ी परिस्थितियां और एक गुंडे का किरदार यानी मेरा स्कूल के माहौल में घुल मिल जाना ही होगा। मुझे बस इतना करना है कि घटनाओं को खेल के अनुसार जितना हो सके आगे बढ़ने दूं और निंदा की घटना को रोक दूं, जिससे खलनायक बेटी अनास्तासिया को अंधकार में डूबने से रोका जा सके। ऐसा करने से मैं, मेरी माँ, मेरे स्वामी मोनिका सान, मेरे वरिष्ठ और साथ ही शाही राजधानी में रहने वाले सभी लोग बच जाएंगे। चलो ये करते हैं। तारांकन 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 तारांकन, और इस तरह वह मौसम आ गया जब सकुरा की पंखुड़ियां हवा में नाचती थी। आखिरकार मेरा दाखिला रॉयल हाई स्कूल में हो गया। ऑटो में खेल के मंच पर मैं एकदम नई यूनिफॉर्म और ब्लेजर पहने रॉयल हाई स्कूल के गेट से गुजरता हूँ। वहां से मैं ऑडिटोरियम की ओर जाता हूँ जो प्रवेश समारोह का स्थल है। सभागार के प्रवेश द्वार पर प्रवेश परीक्षा के परिणाम ऊपर से नीचे तक क्रम से लगे हैं, साथ ही छात्र का वर्गीकरण भी लिखा हुआ है। प्रथम स्थान अनास्तासिया क्लिनेल वॉन रामस्लेट नोबल, दूसरा स्थान एलन विशेष, तीसरा स्थान एमी वॉन ब्रेयस नोबल, चौथा स्थान मार्कस वॉन बेन्स नोबल, पांचवां स्थान क्लाउड जस्टिन डी वेस्टेडेल नोबल, छठा स्थान ऑस्कर वॉन विमलेट नोबल, सातवां स्थान मार्गरेट वॉन अल्टोमुंड नोबल, 11वां स्थान कार्ल हेन्स बार्टिल वॉन सेंट्रेंट नोबल, 21वां स्थान लियोनार्डो वॉन ड्यूक्स नोबल, नीचे बी श्रेणी, 22वां स्थान वांडारिन वॉन सेबेंट नोबल, 23वां स्थान हीड मैरी एसमस सामान्य, 24वां स्थान इसाबेला वॉन लुइनबर्ग नोबल, 39वां स्थान ग्लेन वीटबर्ग सामान्य। ऐसा लगता है कि इस साल वे कुल 39 छात्रों को स्वीकार कर रहे हैं। नाम के बाद कोष्ठक परीक्षा के प्रकार को दर्शाते हैं। नोबल अभिजात वर्ग के लिए है, स्पेशल छात्रवृत्ति प्राप्त छात्र के लिए है और जनरल सामान्य वर्ग के लिए है। वैसे छात्रवृत्ति प्राप्त छात्र होने पर केवल लिखित परीक्षा से छूट का लाभ मिलता है, ट्यूशन फीस से छूट जैसी कोई अन्य सहायता नहीं दी जाती। और किसी कारण से मैं कक्षा ए में आ गया। मैं इस आयोजन में शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए मैं कक्षा बी को प्राथमिकता देता, लेकिन खैर, इसमें कोई मदद नहीं है। कक्षा अ में मेरे अलावा बाकी सभी लोग बेशक कुलीन हैं। कक्षा ब में भी सिर्फ 3 सामान्य छात्र हैं। मैं क्लास ए की सबसे पीछे कोने वाली सीट पर बैठा ताकि मैं अलग न दिखूं। वैसे भी मुझे अपने सहपाठियों से बातचीत शुरू करने की इजाज़त नहीं है। दाखिला लेने से पहले शिष्टाचार की कक्षा में मैंने जो सीखा था उसके अनुसार कुलीन वर्ग के लोगों से आम आदमी की तरह बात करना अपवित्र माना जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसा लगता है कि जब तक दूसरी तरफ से न कहा जाए तब तक बात करना मना है, और अगर आप उससे एक बार बात भी कर लें तो अगर दूसरी तरफ से इजाज़त न मिले तो आपको उससे बात करने की इजाज़त नहीं है। मैं शुरू से ही अलग नहीं दिखना चाहती, इसलिए ये ठीक है, लेकिन मैंने सामान्य उम्मीदों के साथ दाखिला लिया था, इसलिए यह बहुत चौंकाने वाला है कि मैं शुरू से ही अकेली रहूंगी। कुछ देर इंतजार करने के बाद अचानक सभी छात्र अंदर आ गए। अनास्तासिया अपने साथियों के साथ आई, जैसी कि उसकी अद्भुत सुंदरता से उम्मीद थी। मेरे जैसे आम इंसान से अलग उसके चारों ओर एक सुंदर और अप्रतिम आभा थी। इतनी खूबसूरत होने के बावजूद अपनी भावशून्यता के कारण वह एक मूर्ति सी लग रही थी। अनास्तासिया ने मेरी ओर देखा, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि वह दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी और आगे की पंक्ति में बैठ गई। तभी महामहिम राजकुमार कार्ल हाइंज अंदर आते हैं। बाकी 4 बंदी लक्ष्य भी पूरी ताकत से यहां मौजूद हैं। सभी एक भयानक आकर्षक आभा बिखेर रहे हैं। अगर यह खेल कोई लड़की खेलती तो इस जगह पर चीखती चिल्लाती रहती, लेकिन जब मैं उन्हें देखता हूं तो मुझे उल्टी सी होने लगती है। खेल में मुझे उनकी रुचि बढ़ानी पड़ी। चूंकि मुझे उस तरह का कोई शौक नहीं है, इसलिए मुझे काफी मानसिक क्षति हुई। उन्होंने भी मेरी ओर देखा और अनास्तासिया के बगल में बैठ गए। फिर एमी आई, गुलाबी बालों वाली नायिका। वह एक सामंत की बेटी थी और कुछ महीने पहले तक एक आम आदमी की तरह पली बड़ी थी। जब मैंने उसकी ओर देखा तो वह मेरे करीब आए और चीनी जैसी मीठी आवाज में पुकारने लगी, सुप्रभात, मैं एमी वॉन ब्रेयस हूँ। आप स्कॉलरशिप की छात्रा हैं, एलन सान है ना? आपसे मिलकर खुशी हुई। असंभव एक इस प्रवेश समारोह में नायिका को युवराज को देखकर रोमांचित होना चाहिए था। आपसे मिलकर खुशी हुई एमी सामा, मैं एलन हूँ, आम एलन, मेरे प्रति दयालु रहें। मैंने शांत होने का नाटक किया और उसे उत्तर दिया, एलन सान, आपको सभी विषयों में अच्छे अंक मिले थे और आपने 11 साल की उम्र में कक्षा छोड़कर स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, है ना? उस समय मैं एक आम नागरिक था और उसी स्कूल में पढ़ता था, इसलिए मुझे याद है कि आप गपशप का एक गर्म विषय थे। एमी ने हल्की सी शर्म और चमकती आंखों से मेरी ओर देखा। क्यू क्यूट, ओटोम गेम की नायिका से जैसी उम्मीद की जाती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि पकड़ने वाले इस प्यारी अदा पर फिदा हो जाते हैं। हालांकि क्या खेल में पात्र ने इतने मीठे और मूर्खतापूर्ण तरीके से बात की थी। वैसे भी मेरा स्कूली जीवन शुरू से ही उथल पुथल भरा रहा। खैर, मुझे हाई स्कूल में दाखिल हुए एक हफ्ता हो गया है। जैसी की उम्मीद थी, मैं अकेला हूँ, कोई मुझसे बात नहीं करता। मैं एक आदर्श अकेला आदमी बन गया। वैसे एडमिशन वाले दिन सिर्फ एमी ही मुझसे बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने क्राउन प्रिंस से मुलाकात का कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अब उसकी मुझमें रुचि खत्म हो गई है। युवराज एमी की भी खैर खबर ले रहे हैं, कह रहे हैं एमी सान पहले एक आम आदमी थी, इसलिए उसे कई चीजें समझने में दिक्कत होगी, लेकिन लगता है कि मैं एक असली आम आदमी उनकी कोई जरूरत नहीं रखता, इसलिए कक्षा में मेरी उपेक्षा की जाती है। अगर हम दालान में एक दूसरे के पास से गुजरते हैं तो मुझे सिर झुकाना पड़ता है, इसलिए मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिलता। वैसे छात्रावास में निजी कमरे दिए जाते हैं, लेकिन कुलीन और आम लोगों के लिए इमारतें अलग अलग होती हैं, इसलिए एक दूसरे से मिलना संभव नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि दूसरे लोग मुझे नज़रअंदाज कर देंगे, लेकिन एक बार बोलने के बाद नज़रअंदाज होना मानसिक रूप से और भी मुश्किल हो गया। आज एक ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जहां एमी, जिसे हीलिंग का आशीर्वाद मिलना चाहिए, हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करे। कक्षाओं का ओरिएंटेशन भी पूरा हो गया है। आज से पूरे पैमाने पर कक्षाएं शुरू होंगी। पहली कक्षा जादू अभ्यास पर है। मैं अपने कुलीन सहपाठियों के साथ प्रशिक्षण स्थल तक गया। ठीक है, चलो पाठ शुरू करते हैं। जो लोग पहले से ही जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं उनके लिए यह उबाव हो सकता है, लेकिन इसे अच्छी तरह से नियंत्रित करने की मूल बातें सीखना सबसे पहले जरूरी है। शिक्षक छात्रों को संबोधित करते हुए ऐसा समझाते हैं, जो लोग जादू का उपयोग कर सकते हैं वे पहले ही अपना हाथ उठा चुके हैं। शिक्षक के आह्वान पर सभी ने हाथ ऊपर उठा दिए। हाँ, मैं भी अपना हाथ ऊपर उठाता हूँ। हम सबसे पहले तो, चूंकि यह एक जादुई प्रवेश परीक्षा थी, इसलिए स्कूल में प्रवेश करते समय हर कोई इसका उपयोग कर सकता था, है ना? क्या जादू का उपयोग किए बिना नामांकन संभव है? गुननू, ऐसा नहीं है कि यह प्रयास की बर्बादी थी, लेकिन यह निराशाजनक है। ठीक है, तो फिर क्राउन प्रिंस कार्ल हिंज, अगर यह आसान है तो कोई बात नहीं, क्या आप हमें थोड़ा सा दिखा सकते हैं? आह, इसे मुझ पर छोड़ दो। इतना कहकर युवराज आगे आए और पूरे आत्मविश्वास से मंत्रोच्चार करने लगे। मुझे नहीं पता कि वे क्या कह रहे हैं क्योंकि वे बहुत दूर हैं, लेकिन जब उन्होंने एक आग का गोला बनाया तो उसे लक्ष्य की ओर फेंका, जो सीधे लक्ष्य पर लगा। ताली ताली ताली, कक्षा में सभी लोग तालियां बजाने लगे। तो मैं भी तालियां बजाता हूँ। वैसे युवराज को अग्नि जादू और नायक का आशीर्वाद प्राप्त है, बिल्कुल किसी कहानी के नायक की तरह। खेल में नायक के आशीर्वाद प्रभाव आपको और आपके दोस्तों को नेतृत्व करते समय मजबूत करने जैसे थे। इस तरह यदि आप इसे सही ढंग से नियंत्रित करते हैं तो आप इसे बहुत दूर होने पर भी मजबूती से मार पाएंगे। इसके विपरीत यदि आप इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो आप लक्ष्य पर नहीं मार पाएंगे, या सबसे खराब स्थिति में ये नियंत्रण से बाहर हो सकता है और उल्टा असर कर सकता है। शिक्षक जादू के प्रयोग के लिए सावधानियों के बारे में बताते हैं। तो फिर अगला नाम अनास्तासिया सामा है, ठीक है? शिक्षक के बुलाने पर अनास्तासिया आगे आई। इस दौरान अनास्तासिया और युवराज ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं, बातचीत तो दूर की बात थी। अनास्तासिया ने राजकुमार को धन्यवाद भी दिया, लेकिन राजकुमार ने अनसुना कर दिया। जाहिर है दोनों के बीच संबंध अभी भी काफी असहज हैं। अनास्तासिया एक बर्फ का तीर बनाती है और लक्ष्य पर चलाती है। अनास्तासिया द्वारा चलाया गया बर्फ का तीर लक्ष्य को नष्ट कर देता है और उसके पीछे की दीवार से टकराकर रुक जाता है। ताली ताली ताली, फिर से सब तालियां बजाने लगे। जाहिर है इस समय अनास्तासिया के पास युवराज से भी बेहतर जादुई क्षमताएं हैं। वैसे अनास्तासिया के आशीर्वाद आइस मैजिक और नाइट हैं। केवल दो आशीर्वाद वाले पात्र क्राउन प्रिंस और अनास्तासिया हैं। हालांकि राजकुमार को लगा कि उसकी मंगेतर ने उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाई है। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने दोबारा शादी करने की मांग की। अनास्तासिया, लक्ष्य को नष्ट करना, जबकि मैं ऐसा करने में असमर्थ था। क्या तुम मेरी इज्जत को बदनाम करना चाहती हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मुझे इसके लिए खेद है। अनास्तासिया ऐसा कहती है और चुपचाप झुक जाती है। बस अब मैं तुम्हें अपनी पूरी शक्ति दिखाऊंगा। इतना कहने के बाद युवराज मंत्रोच्चार शुरू कर देते हैं। महाराज, ऐसा मत करो। अनास्तासिया राजकुमार को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। राजकुमार अपने हाथ में एक विशाल आग का गोला बना लेता है। कु ओ महारानी, युवराज कराहता है और अनास्तासिया की चीख जैसी आवाज गूंजती है। और अगले ही पल युवराज का आग का गोला नियंत्रण से बाहर हो गया। आग का गोला हाथ में फट जाता है और उसकी लपटें पूरे इलाके में फैल जाती हैं। लेकिन अगले ही पल अनास्तासिया ने आसपास के माहौल को जमा दिया और राजकुमार की भड़की हुई लपटों को तुरंत बुझा दिया। महारानी, कालसामा, एमी, चिंतित भाव से मीठी आवाज में राजकुमार के पास दौड़ी। फिर उसने जले हुए राजकुमार को ठीक करने के लिए उपचारात्मक जादू का इस्तेमाल किया। क्या? अनास्तासिया हैरानी से इस स्थिति को देखती रही। और तो और, वहां मौजूद शिक्षकों ने भी यह सब बंद नहीं किया। इसके लगभग 10 मिनट बाद राजकुमार का जला हुआ घाव पूरी तरह से ठीक हो गया। हम इतना समय लग गया, क्या खेल में तो यही बताया गया था? एमी, ये है, ये कहते हुए युवराज आश्चर्य से एमी को देखता है। महाराज, क्या आप ठीक हैं? अनास्तासिया राजकुमार को रुमाल देने की कोशिश करती है, लेकिन राजकुमार मना कर देता है और खड़ा हो जाता है। एमी के कंधों पर हाथ रखते हुए राजकुमार उसे धन्यवाद देता है। आह, ये तो था ही, आज भी ऐसी ही एक घटना है। धन्यवाद एमी, ये कितनी अद्भुत शक्ति है। यही तो मैं तो कालसामा के लिए प्रार्थना कर रहा था। जब अनास्तासिया ने ये स्थिति देखी तो उसकी भौहें तन गईं, लेकिन उसने बिना कुछ कहे मुंह मोड़ लिया और चली गई। क्या यह मेरी कल्पना थी या मैंने देखा कि एमी ने अनास्तासिया की स्थिति पर हल्की सी मुस्कान के साथ नजर डाली? आज की क्लास खत्म हो गई। अब जब तुम्हें पता चल गया है कि जादू क्या होता है, तो चलो आज से कड़ी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। बस जाओ, विदा। जब शिक्षक ने ऐसा कहा तो वह तुरंत प्रशिक्षण स्थल से चला गया। खैर, यही तो घटना थी। जिस शिक्षक ने इसे ठीक से नहीं रोका वह भी एक शिक्षक ही था। और अपनी मंगेतर से अपमानित युवराज ने बचकाना विरोध किया और पाठ बिगाड़ दिया। उसने भागते हुए जादू को रोकने वाली मूल रक्षक खलनायक बेटी अपनी मंगेतर के साथ दुष्टता से व्यवहार किया और केवल एमी को धन्यवाद दिया। हालांकि यह एक ढीला ढाला और सुविधाजनक ओटोम गेम इवेंट है, लेकिन इस तरह का हास्यास्पद तमाशा देखने के बाद अच्छा महसूस नहीं होता। हालांकि मुझे ऐसा लगता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने आज्ञाकारी होकर प्रशिक्षण मैदान छोड़ दिया। लेखक का नोट, मेरे काम को पढ़ने और समर्थन देने के लिए धन्यवाद। आप सभी का शुक्रिया, क्या ही सरप्राइज है। मैं फैंटेसी जोन में विभिन्न विश्व पुनर्जन्म श्रेणी की दैनिक रैंकिंग में 4th स्थान पर पहुंच गया हूं। मैं उन सभी देवताओं पाठकों का आभारी हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। जब से एमी ने युवराज का इलाज किया था जो उसके भागे हुए जादू से घायल हो गया था, तब से उसे कमोबेश परेशान किया जाने लगा, जो कि एक स्वाभाविक परिणाम हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब एमी कक्षा में प्रवेश करती है तो कुछ छात्र जानबूझकर उसकी उपेक्षा करते हैं और चुपचाप गपशप करते हैं, लेकिन इतनी ऊंची आवाज में कि एमी सुन सके कि अफवाहें सच हैं या नहीं। जैसे कि उसका मन नगण्य है, वह पूर्व में आम नागरिक थी, उसके आचरण खराब हैं, वह एक वेश्या की संतान है आदि। मैंने ये भी अफवाहें सुनी हैं कि लड़कियों के छात्रावास में कभी कभी उसे अपने कमरे में अपना सामान नहीं मिलता। इस बारे में मुझे इसकी जानकारी नहीं है। खेल में स्कूल में उत्पीड़न का नेतृत्व अनास्तासिया के तथाकथित साथियों द्वारा किया गया था। खेल में चूंकि वे गृहयुद्ध के बाद स्कूल से गायब हो गए थे, इसलिए उनके बारे में कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया था। लिखा था कि कुछ कुलीन वर्ग कुचले गए थे, इसलिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। मुझे लगता है कि शायद उनके साथ भी यही हुआ होगा। वैसे मैंने कई बार देखा है कि अनास्तासिया जब ऐसे दृश्य देखती थी तो वह खुद को ऐसे निम्न और बेकार उत्पीड़न में शामिल होने से बचाती थी। मैं आमतौर पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए छिपाना का उपयोग करता हूँ, लेकिन जब मैंने उसे उस समय देखा तो अनास्तासिया सावधान थी, इसलिए मुझे लगता है कि वह इसे रोकने की कोशिश करने के बारे में सोच रही थी। वैसे दूसरी ओर एमी बिल्ली जैसी आवाज में राजकुमारों और अन्य शिकारियों पर चुपके से हमला कर रही है और सारी धमकियों को नजरअंदाज कर रही है। ऐसा लगता है कि खेल में उसका किरदार एमी से काफी अलग है। खैर, खेल में घटना के अलावा कोई और दृश्य नहीं दिखाया गया, तो शायद यही वजह रही होगी। इसके अलावा एक आम लड़की अचानक बैरन परिवार के कब्जे में आ जाती है और उसे रईसों से भरे स्कूल में दाखिला मिल जाता है जहां उसे तंग किया जाता है। अगर युवराज और रसूखदार रईसों के बेटे उसकी देखभाल करते हैं तो उन पर भरोसा करते हुए उनके प्यार में पड़ना लाजमी है। खैर, ऐसी परिस्थितियों के कारण कक्षा का माहौल पहले से ही सबसे खराब है। कक्षा की लड़कियां अनास्तासिया और क्राउन प्रिंस के गुट में विभाजित हो जाती हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, अनास्तासिया का गुट एमी को खत्म करना चाहता था, लेकिन लगता है कि उनके पास ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि अनास्तासिया ने खुद कुछ भी करना बंद कर दिया है। इसके अलावा उनकी संख्या भी बहुत कम है। दूसरी ओर क्राउन प्रिंस का गुट एकजुट नहीं है। ऐसा लगता है कि वे अनास्तासिया को बेदखल करने के लिए एमी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि क्राउन प्रिंस के गुट को एमी की कोई परवाह नहीं है, इसलिए वे अक्सर उसकी बुराई करते और उसे परेशान करते नजर आते हैं। इसके अलावा युवराज के व्यवहार में भी काफी गड़बड़ियां हैं। मंगेतर होने के बावजूद वह सिर्फ एमी के साथ ही समय बिताता है, जरूरत पड़ने पर ही अनास्तासिया से बात करता है। ऐसा लगता है कि मेरे आसपास के लोग इसी वजह से अनास्तासिया को बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं, लेकिन सच कहूं तो मैं चाहता हूं कि वे ये घटिया हरकतें करना बंद कर दें। चाहे राजघराने हों या कुलीन, वे आम लोगों से कर वसूलते हैं और विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि वे कम से कम अपनी जिम्मेदारियां तो निभाएं। खासकर युवराज को भावी राजा के रूप में देश को एकजुट करना है, लेकिन वह जो करता है वह असहनीय है। अनास्तासिया ड्यूक ऑफ रैम्सलेट की बेटी है जो दक्षिणी ब्रेडबास्केट पर नियंत्रण रखता है, जहां देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन होता है। आप इस सुविधापूर्ण विवाह का अर्थ समझ सकते हैं, है ना? दूसरी ओर एमी बैरोनेस ब्रेज हैं, जो एक तथाकथित साधारण कुलीन परिवार से हैं। वह न तो बहुत गरीब हैं और न ही अमीर, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनके मजबूत संबंध हैं। ब्रेज परिवार जैसे लोगों के लिए एमी का रानी बनना फायदेमंद होगा, भले ही वह एक साधारण बच्ची ही क्यों न हो, लेकिन देश के लिए अव्यवस्था अपरिहार्य है। इस देश के इतिहास पर नजर डालने से मुझे पता चला है कि ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें रानियों को, जिनके माता पिता के घर में कमजोर समर्थन मिला था, किसी उच्च पदस्थ कुलीन की बेटी ने पदभार ग्रहण किया। उदाहरण के लिए, जब उनके माता पिता का घर ढह गया या वह उपयुक्त नहीं रहा तो उन्हें तलाक लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, या फिर जब हालात बहुत खराब थे तब उनकी हत्या कर दी गई। इसलिए इस देश के लाभ के लिए युवराज को अनास्तासिया को रानी और एमी को शाही उपपत्नी अर्थात रखेल के रूप में स्वीकार करना चाहिए। फिलहाल ये देश एक पत्नीवादी है, इसलिए वह रखेल नहीं रख सकता, लेकिन अमीर लोग खुलेआम अपनी रखेलों के साथ इश्कबाजी करते हैं और मैंने कभी किसी को उन पर दोष लगाते नहीं सुना। खैर, आखिरकार ये दुनिया उस कष्टप्रद ओटोम गेम की दुनिया है, और नियति के अनुसार शाही राजधानी और मैं, मेरी माँ, स्वामी मोनिका सान और मेरे वरिष्ठ साहसी सभी बर्बादी की राह पर हैं। उदास होकर मैंने एक गहरी सांस छोड़ी और कक्षा की ओर चल दिया। उसी तरह आज भी कक्षा के कोने में बैठकर हवा खाने का दिन शुरू हुआ। अरे वैसे मैंने सफलतापूर्वक एक मूर्ति की तरह अपनी जगह बना ली है। कोई मुझसे बात नहीं करता और मैं एक आम आदमी हूँ, इसलिए मैं कक्षा में जरूरी होने के अलावा कुलीन लोगों से बात नहीं कर सकता। शायद उन्हें लगता है कि मेरी उपस्थिति कम है, इसलिए उन्हें हर समय मेरी परवाह नहीं रहती। शायद मेरे साथ एक आम आदमी जैसा व्यवहार किया जाता है जो सिर्फ पढ़ाई कर सकता है। समय बीतता गया और गर्मी की छुट्टियां आ गईं, जो कल से शुरू हो रही हैं। अब तक मैं जानकारी इकट्ठा करने में ही लगा रहा हूं, क्योंकि रास्ते को लेकर अनिश्चितता के इस दौर में मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरी ओर एमी ने सभी कार्यक्रम आसानी से पूरे कर लिए हैं। उसे न सिर्फ युवराज ने बल्कि बाकी पकड़े गए लोगों ने भी घेर लिया है और उसके साथ एक राजकुमारी जैसा व्यवहार किया है। बेशक युवराज के अलावा बाकी सभी लोग भी कुलीन वर्ग के हैं और पड़ोसी देश के तीसरे राजकुमार क्लाउड को छोड़कर उन सभी की मंगेतरें हैं। चूंकि उनकी मंगेतरों का स्कूल में दाखिला नहीं था इसलिए कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन लहरें तो फैल ही रही थीं। निजी तौर पर मुझे लगता है कि अच्छा होता अगर एमी राजकुमार क्लाउड के साथ ही रहती जिनकी कोई मंगेतर नहीं है। खैर ऐसा लगता है कि एमी रिवर्स हरम मार्ग का लक्ष्य बना रही है, बेशक मुझे अभी तक यकीन नहीं है। खैर एमी एंड कंपनी को देखकर लगता है कि युवराज से दूरी सबसे कम है, लेकिन साथ ही दूसरे कब्जे वाले ठिकानों से दूरी भी काफी कम है। और इस समय राजकुमार क्लाउड के साथ इतनी नजदीकी सिर्फ क्लाउड और उल्टे हरेम रूट पर ही होती है। इसके अलावा क्लाउड के रूट में मुख्य शूरवीर के बेटे लियोनार्डो वाला झंडा पहले ही टूट चुका है, इसलिए लियोनार्डो एमी से थोड़ी दूर ही होगा। यदि ऐसा है तो प्रवाह लगभग क्राउन प्रिंस के मार्ग के समान ही होगा, जिसका लाभ यह है कि इसे पढ़ना आसान है। अब मैं समापन समारोह में शामिल होने के लिए सभागार की ओर बढ़ा। वहां सभागार की दीवार के चारों ओर भीड़ जमा थी, जहां अंतिम परीक्षा के परिणाम लगे थे। योजक चिन्ह: प्रथम स्थान एलन 500, दूसरा स्थान अनास्तासिया क्लिनेल वॉन रामस्लेट 497, तीसरा स्थान एमी वॉन ब्रेयस 479, चौथा स्थान मार्कस वॉन बेन्स 458, पांचवां स्थान क्लाउड जस्टिन डी वेस्टेडेल 438, छठा स्थान मार्गरेट वॉन अल्टमुंड 423, बारहवां स्थान ऑस्कर वॉन विमलेट 413, तेरहवां स्थान हीड मैरी असमस 412, चौदहवां स्थान कार्ल हिन्स बाटिल वॉन सेंट्रेंट 411, अट्ठाईसवां स्थान वानडारेन वॉन सेबेन 386, उनतीसवां स्थान इसाबेला वॉन लुइनबर्ग 385, अड़तीसवें ग्लेन वीडबर्ग 375, उनतालीसवां स्थान लियोनार्डो वॉन जुकेस 321। योजक चिन्ह: ओह ऐसा लगता है कि मैं पूर्ण अंक प्राप्त करने में सफल रहा। हालांकि पूर्ण अंक प्राप्त करना स्वाभाविक है, क्योंकि जापानी मिडिल स्कूल के छात्र भी इससे अधिक उन्नत विषय वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने तैयारी और समीक्षा परीक्षा के लिए अध्ययन करने हेतु अपना होमवर्क किया। आखिरकार मैं भी एक आम आदमी हूँ। कम ग्रेड आने पर पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है, इसलिए मुझे अपने ग्रेड जितना हो सके अच्छे रखने होंगे। ऐसा लगता है कि गर्मी की छुट्टियों के बाद वर्गीकरण का फैसला जादू और तलवारबाजी परीक्षा के परिणामों, गर्मी की छुट्टियों के दौरान मुफ्त शोध के परिणामों और सामाजिक स्थिति के साथ इस परिणाम का व्यापक रूप से आकलन करके किया जाएगा। सामाजिक स्थिति सचमुच। खैर सरदार के बेटे का ग्रेड सबसे कम है, क्या ये ठीक है? खैर खेल में भी यही वर्णन था कि परिणाम अच्छे नहीं थे, और जरूर कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ होगा जिसमें एमी ने मिलनसारिता दिखाई और विषयों को पढ़ाते हुए लोगों की पसंद बढ़ाई। लेकिन हो क्या रहा है? शायद इसलिए कि वे एमी जो तीसरे स्थान पर है को ये सिखाने में व्यस्त थे कि उसे अपने परिवेश के साथ कैसे तालमेल बिठाना है, वे इस ग्रेड पर अटक गए। नहीं ऐसा ही है या है? खैर कहानी पटरी से उतर चुकी है, तो चलिए वर्तमान स्थिति पर लौटते हैं। मेरे मामले में मेरी कोई सामाजिक हैसियत नहीं है, परीक्षा एकदम सही है और जादू की परीक्षा दरबारी जादूगर के बेटे से थोड़ी कमजोर रखी गई है। हालांकि तलवारबाजी उन विरोधियों के लिए कोई मुकाबला नहीं है जिनके पास आशीर्वाद और कौशल हैं, फिर भी मुझे लगता है कि इसमें मेरी एक अच्छी बात है, शायद यह औसत से थोड़ा ऊपर है। तो क्या स्कूल के शिक्षकों द्वारा मेरा मूल्यांकन एक सामान्य व्यक्ति के रूप में किया गया है जिसके पास औसत वायु जादू क्षमता है? यही कारण है कि मैं इस परिणाम के साथ स्कूल नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी एड़ियां वापस मोड़कर सभागार में प्रवेश करता हूँ। फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ओबाव समापन समारोह शुरू होता है। एक महान व्यक्ति की लंबी कहानी सुनने के बाद जब मैं कक्षा में लौटता हूँ तो कक्षा शुरू होती है। फिर प्रत्येक व्यक्ति का नाम पुकार कर उत्तर पुस्तिका वापस कर दी जाती है। एलन कुन, तुम अकेले ऐसे थे जिन्हें परफेक्ट नंबर मिले थे। मैंने सुना था कि तुम हमारी स्कूल प्रणाली की शुरुआत से ही प्रतिभाशाली थे, लेकिन तुमने बिना किसी पछतावे के अपनी प्रतिभा दिखाई है। सभी लोग एलन कुन के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जब मुझे बुलाया गया और मैं आगे गया तो टीचर ने कहा कि हालांकि मैं इससे खुश हूं, फिर भी थोड़ा परेशान हूं क्योंकि मैं इतना अलग नहीं दिखना चाहता था। इसके अलावा अभिजात वर्ग वैसे भी आम लोगों की सराहना नहीं करेगा। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन एक व्यक्ति है जो मेरी सराहना कर रहा है। अनास्तासिया ही थी जिसे सबसे पहले बाहर कर दिया गया था, और उसके आसपास की कुलीन बेटियां, जिनका अनास्तासिया से अपेक्षाकृत गहरा रिश्ता है, भी मेरी सराहना करती हैं। मैंने अनास्तासिया और अन्य सभी लोगों को उनकी तालियों के लिए तहे दिल से धन्यवाद दिया और फिर अपनी सीट पर लौट आया। फिर जब सभी की उत्तर पुस्तिकाएं वापस कर दी गईं, तो गर्मी की छुट्टियों में मुफ्त शोध की विषय वस्तु समझाई गई। ऐसा लगता है कि कुछ भी किया जा सकता है और मूल्यांकन का कोई मानदंड ही नहीं है। आह, मैं समझ गया। दूसरे शब्दों में यह ऐसा ही है। यह एक सुस्थापित विद्यालय है जिसका सामाजिक स्वरूप बहुत मजबूत है और इस निःशुल्क शोध को वर्गीकरण के मूल्यांकन मानक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आप किसी महान कुलीन व्यक्ति को निम्न वर्ग में नहीं रख सकते। हम फिर नहीं, लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होती। मैं एल्फ लोक कथाओं को सुनकर उन्हें एक रिपोर्ट में ढाल सकता हूँ, या फिर चाहूँ तो ऑक कालकोटरी की खोज या दूसरी उपलब्धियों पर भी रिपोर्ट बना सकता हूँ। इमी और उसके पकड़े गए लक्ष्यों के लिए एक खंडहर अन्वेषण कार्यक्रम है, लेकिन इसमें हस्तक्षेप करने जैसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मुझे बस अनास्तासिया को गुस्सा होने से रोकना है और तथाकथित ओटोम गेम टेम्पलेट कार्यक्रम शुरू करने से रोकना है। फिर अनास्तासिया, जिसने इमी को धमकाना बंद कर दिया था, पूरी तरह से बरी हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि इस देश में ये कितना प्रभावी होगा, जहां सामाजिक स्थिति और शक्ति स्वयं बोलते हैं, लेकिन मैं वह करूंगा जो मैं कर सकता हूं। जब होमरूम समाप्त हो गया और मैं छात्रावास में लौटने के लिए अपनी सीट से उठा, तो अनास्तासिया ने मुझे आवाज दी। अरे एलन, ठीक है। मैंने जल्दी से अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखा और बायां हाथ कमर के पीछे रखा, फिर मुड़कर घुटनों के बल बैठकर जागीरदारों का धन्यवाद किया। यह एक ऐसा लहजा है जो किसी ड्यूक की बेटी जैसा नहीं लगता। लेकिन खेल में भी अनास्तासिया हमेशा किसी निचले दर्जे के व्यक्ति से बात करते समय इसी लहजे में बात करती थी। पहले तो मुझे हैरानी हुई और मेरे मन में एक धारणा बनी कि वह जरूर किसी घमंडी खलनायक की बेटी जैसा किरदार होगा, लेकिन ऐसा देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। हालांकि मैं बिना किसी पछतावे के खुद को एक निम्न दर्जे के व्यक्ति के रूप में स्वीकार करता हूँ। हाँ, अनास्तासिया सामा द्वारा मेरा नाम याद रखने पर मैं गौरवान्वित हूँ। अच्छा, हम स्कूल में हैं, इसलिए तुम्हें इतना सम्मान दिखाने की जरूरत नहीं है। खड़े हो जाओ। हाँ, मुझे अनुमति मिल गई और मैं खड़ा हो गया। आप एक साहसी के रूप में योग्य हैं, है ना? हाँ, क्या आपने कभी कालकोठरी में प्रवेश किया है? अगर यह गोब्लिन डंगोन है तो मेरे पास है। मैं समझ गया। ठीक है, मैं बाद में एक संदेशवाहक भेजूंगा। आपको रोकने के लिए मुझे खेद है। हाँ, इतना कहकर अनास्तासिया अपने साथियों के साथ चली गई। क्या कोई संदेशवाहक आएगा? क्या उसने मुझे नोटिस किया? खैर, चूंकि स्कूल की मूर्ति जीवन शैली रुक गई है, मैं पैसे कमाने के लिए पवन पर्वत की कालकोठरी में जाने की सोच रहा था। लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। गर्मी की छुट्टियों के तीसरे दिन मैं उत्तर पूर्वी जंगल के प्रवेश द्वार पर हूँ, जहाँ वो खंडहर है जहाँ से मुझे मूल्यांकन का स्क्रॉल मिला था। मेरे अलावा अनास्तासिया, क्राउन प्रिंस और एमी के साथ अन्य बंदी लक्ष्य भी मौजूद हैं। महामहिम और यहाँ उपस्थित सभी लोग, आज आपके समय के लिए धन्यवाद। मैं घुटने टेक कर अपने जागीरदारों को धन्यवाद देता हूँ। ओह, युवराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा, लगता है उसे मुझमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। वो इमी को स्नेह भरी नजरों से देख रहा है, जबकि अनास्तासिया ऐसे राजकुमार को ठंडी नजरों से देख रही है। वैसे सभी के ऐसी जगह आने का कारण ये था कि अनास्तासिया ने मुझे राजकुमारों को उनके स्वतंत्र शोध में मदद करने के लिए कहा था। भले ही यह ड्यूक की बेटी का अनुरोध हो, मेरे जैसे आम आदमी के लिए यह असल में एक आदेश है, इसलिए मेरे पास इसे अस्वीकार करने का विकल्प नहीं है। अगर मैं मना कर दूं तो जाहिर है मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। खैर, फिलहाल तो मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं इसे एक संयुक्त नाम से जमा कर पाऊंगा। लेकिन मैं एक निम्न स्तरीय व्यक्ति हूं, इसलिए मुझे पांडुलिपि लिखने से लेकर रिपोर्ट की प्रूफ रीडिंग तक सब कुछ अकेले ही करना होगा, इसलिए ये जटिल लगता है। अब मैंने बहुत शिकायत की है। संक्षेप में, यह एक ऐसी घटना है जहां नायिका एमी को खेल में मूल्यांकन का स्क्रॉल मिलता है। यहां तक कि खेल में भी, राजकुमार मार्ग या रिवर्स हरम मार्ग के दौरान जब राजकुमार सदस्य था, अनास्तासिया ने उसका अनुसरण किया और सुरक्षा के लिए उसका मार्गदर्शन करने के लिए एक बाहरी साहसी को काम पर रखा। हालांकि लगता है कि आयोजन थोड़ा बदल गया है, क्योंकि स्कूल में मेरे नाम का एक विदेशी तत्व घुल मिल गया है। शायद अनास्तासिया ने सोचा होगा कि बाहर से किसी अनजान साहसी को काम पर रखने से बेहतर होगा कि कक्षा में ही किसी सुविधा प्राप्त साहसी को मुफ्त में काम पर रखा जाए। दूसरी ओर, ये तथ्य कि सभी कब्जे के लक्ष्य यही है, इसका अर्थ है कि एमी रिवर्स हरम पर निशाना साध रही है। तुम्हें पता है, रिवर्स हरम रूट को साफ करना काफी मुश्किल होता है। मुझे इधर उधर घूमकर अच्छी तरह से झंडे लगाने पड़ते हैं, लेकिन जाहिर है एमी अच्छा कर रही है। मुझे लगता है कि जब मेरी पसंद की लड़की मेरे दोस्तों के साथ एक के बाद एक अंतरंग होती जाती है, तो यह मानसिक रूप से परेशान करने वाला होता है। लेकिन लगता है यहाँ हर कोई ऐसा नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि एमी को उसकी कक्षा की लड़कियां नापसंद करती हैं और बदमाशी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। खैर, अनास्तासिया इसमें शामिल नहीं लगती और यह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, क्या तुम सब तैयार हो? अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुम सबको खंडहर तक ले चलूंगा। ओह, कोई बात नहीं, तो मैं आगे बढ़ूंगा। रास्ते में एक सींग वाला खरगोश राक्षस है जिसे हॉर्न रैबिट कहते हैं। अगर आप सावधान नहीं रहे तो आपको सींग से चोट लग सकती है और आप घायल हो सकते हैं। हाँ, आप किसकी बात कर रहे हैं? मानो मैं किसी सींग खरगोश जैसे जीव से हार जाऊंगा। प्रिंस क्लाउड ने ऐसा कहा मानो वह मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा हो। मैं भविष्य में नाइट लीडर बनने के लिए भी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। हॉर्न रैबिट जैसे जीवों को मैं एक ही वार में मार गिराऊंगा। हम मैं ऐसे हॉर्न रैबिट का बारबेक्यू बनाऊंगा। अरे, अगर आप हॉर्न रैबिट को जला देंगे तो केवल कोयला ही बचेगा। दूसरे लोग भी मेरे शब्दों का मौखिक विरोध करते हैं। सबसे पहले लियोनार्डो, ऑस्कर, मार्कस और अंत में प्रिंस कार्लेहिंस। वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं भुने हुए हॉर्न रैबिट को बिना खून निकाले खा पाऊंगा, लेकिन मैंने तसुक्कुमी न डालने का फैसला किया। आह ओम, मुझे यकीन है कि एलन सान चिंतित थे इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। इमी पकड़े गए लक्ष्य से अजीब मीठी आवाज में बात करती है। ओह, जैसी उम्मीद थी। एमी आम लोगों का भी ख्याल रखेगी। यह मेरी एमी है। अरे, एमी क्लाउड की नहीं है, है ना? ये सही है, वह मेरी है ना? नहीं, वह मेरी है। ओह, वह तो मैं, मेरे सामने एक घिनौनी बातचीत चल रही थी। जब मैंने अनास्तासिया की तरफ देखा तो वह युवराज और कंपनी को एक बेसुरी नजर से देख रही थी। जब अनास्तासिया ने मेरी नजरें देखी तो एक पल के लिए उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी के भाव आए, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने फिर से रूखे भाव से उन छह लोगों को ठंडे स्वर में बताया। महामहिम, यदि बहुत देर हो गई तो महाराज चिंतित हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। युवराज, जिनके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी, ने अपनी जीभ चटकाई, शायद इसलिए क्योंकि वह इस बात से नाराज थे कि इस बातचीत से उनका मधुर मूड खराब हो गया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब चलो, मैं कुछ नहीं कह सका। कोई बात नहीं, वो तो युवराज है। मैं रूखा व्यवहार नहीं कर सकता। मैंने भावशून्यता से एक छोटा सा जवाब दिया, हाँ, और उन्हें खंडहरों की ओर ले गया। इस खंडहर में ल्यूमिनस मॉस टीएल, इसे मूल रूप से अकारिगोक कहा जाता था, जिसका अर्थ है प्रकाश उत्सर्जित करने वाली काय, नामक एक काय है जो अंदर को अच्छी मात्रा में प्रकाशित करती है। इसलिए इस खंडहर में मशालों और लालटेन जैसी रोशनी की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान रखें कि अन्य कालकोठरियों या खंडहरों के साथ ऐसा नहीं है। जब हम खंडहरों पर पहुंचे तो मैंने उस साहसी व्यक्ति की पंक्तियां दोहराई जिसने खेल में राजकुमारों और कंपनी का मार्गदर्शन किया था। मुझे बेकाबू परिस्थितियों से बचने के लिए खेल के अनुसार जितना हो सके आगे बढ़ना चाहिए। एमी, जिसने मेरी बातें सुनी थी, मेरी तरफ देखते हुए कुछ बुदबुदा रही थी। जब मैंने ये देखा तो मैंने सहज ही उससे पूछ लिया, एमी सामा, कोई समस्या है क्या? एह आह ओम, जैसी की उम्मीद थी, साहसी लोग इससे बहुत परिचित हैं। क्या ऐसा है? धन्यवाद, अगर आपकी कोई चिंता है तो कृपया बेझिझक उसे बताएं। मुझे थोड़ा असहज महसूस हुआ कि उसने ये पंक्तियां कितनी अजीब मीठी आवाज में कही। मैं इस बेचैनी के साथ खंडहरों की ओर बढ़ता हूँ बिना यह समझे कि यह क्या है। वाह, कमाल है, दीवारें बहुत चमक रही हैं, ये बहुत खूबसूरत है। ये सही है, लेकिन एमी अधिक सुंदर है, तुम्हें पता है। एमी दृश्यों से प्रभावित होती है और क्राउन प्रिंस उसकी प्रशंसा करते हैं। ये खेल में होने वाली बातचीत जैसा ही है। अनास्तासिया इन दोनों लोगों को ठंडी निगाहों से देखती है। इस तरह हम खंडहर के अंत में पहुंच जाते हैं। फिर एमी बाईं ओर जाने की कोशिश करती है तो मैं उसे रोक देता हूँ। एमी सामा, यह एक छोटा सा कमरा है जिसमें कुछ भी नहीं है। अरे, क्या ऐसा है? एमी ने मुझसे मीठी आवाज में पूछा। एमी इसे देखना चाहती है, थोड़ी देर के लिए तो ठीक है ना? समझा, जैसी की उम्मीद थी, युवराज ने एमी को ढक लिया, इसलिए मैं बाईं ओर वाले छोटे से कमरे में चला गया। और एमी, जो मेरे बाद आई थी, सीधे छोटे से कमरे के दाहिने पिछले कोने की ओर चली गई मानो उसमें समा रही हो। आह, मैं समझ गया, क्या ऐसा है? जैसा कि एलन ने कहा, इस कमरे में कुछ भी नहीं है। अनास्तासिया ने अपने विचार प्रकट कर दिए। वहां एमी की हरकतें देखकर मुझे एक बेहतरीन कहानी याद आ गई और मैंने अनास्तासिया के एकाला पर चुटकी लेने की कोशिश की। हाँ, ऐसा लगता है कि लगभग 7 साल पहले इस जगह पर भूतों ने घोंसला बनाया था। उस समय मैं अभी भी एक बच्चा था, इसलिए मैं वशीकरण में भाग नहीं ले सका। लेकिन एडवेंचरस गिल्ड के वरिष्ठों से मैंने जो सुना है वह यह है कि ऐसा लगता है कि इस कमरे में भूतों ने अपने एकत्रित खजाने जमा किए थे। हालांकि चूंकि सभी साहसी लोग वशीकरण के दौरान उन्हें वापस ले आए थे, इसलिए अब कुछ भी नहीं बचा है। बेशक मैं इस तथ्य को छिपाता हूं कि मैंने चुपके से मूल्यांकन का स्क्रॉल चुरा लिया और चांदी के सिक्के उठा लिए। मैं समझ गया, क्या ऐसा भी कुछ हुआ था? अनास्तासिया ने सिर हिलाया मानो मेरी व्याख्या से प्रभावित हो। उसके चेहरे पर पहले जैसी जड़ता नहीं थी, बल्कि उसकी उम्र के हिसाब से उसमें एक लड़कपन की झलक थी। एमी हमारी बातचीत सुनते हुए दूसरे कोने में चली गई, फिर जमीन पर नजर डाली और कुछ फुसफुसाया। हम एमी, क्या हुआ? कुछ नहीं। जब क्राउन प्रिंस एमी के संदिग्ध व्यवहार से चिंतित हुए तो उन्होंने उससे इसके बारे में पूछा। एमी ने जल्दी से जवाब दिया। जैसी की उम्मीद थी, उसके व्यवहार में एक अपनापन सा था। खैर, मैंने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या एमी भी मेरी तरह इस दुनिया के बारे में जानती है, यानी उस ओटोम गेम की सेटिंग्स के बारे में। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वह इस छोटे से कमरे में प्रवेश करना चाहती थी, वह कमरे के दाईं ओर पीछे की ओर चली गई और वह दूसरे कोने की जांच की। ऐसा लगता है कि वह मूल्यांकन का स्क्रॉल और चांदी के सिक्के से मिलने वाला गेम मोड चाहती थी, जिसकी पुष्टि मैंने की है। खैर, मूल्यांकन का स्क्रॉल खेल के किसी भी आसान, सामान्य और कठिन मोड में आना चाहिए था, और कोई अन्य खेल मोड नहीं होना चाहिए था। एमी ने इस स्थिति के बारे में क्या सोचा? अरे चलो आगे बढ़ते हैं, मेरा मार्गदर्शन करो। ठीक है, जब क्राउन प्रिंस ने मुझे आदेश दिया तो मैंने सोचना बंद कर दिया और खंडहरों के चारों ओर मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके बाद मैंने आसपास मार्गदर्शन किया, जड़ी बूटियां इकट्ठी की और नीले रंग के कीचड़ का अवलोकन किया। हम खंडहर के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे, जहां कालकोठरी का केंद्र माना जाता है, जब ये खंडहर अतीत में एक कालकोठरी था। ये वह हिस्सा है जहां डंगोन कोर होने की बात कही गई थी जब यह एक डंगोन था। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह कब और क्यों गायब हो गया। मुझे ये भी नहीं पता कि यह वास्तव में एक डंगोन था या नहीं। जब मैंने उसे समझाया तो अनास्तासिया उत्सुकता से दीवार के आसपास खोदने लगी। दूसरी ओर एमी उसके बालों से बोरियत से खेल रही थी। शायद अब उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रही। ची, मुझे ऐसी जगह पर इतना बड़ा राक्षस देखने को नहीं मिला। महामहिम क्लाउड, क्या हम एमी के साथ नहीं हैं? क्या हमें खुश नहीं होना चाहिए कि खतरा कम था? नहीं मार्कस, एमी को कोई खतरा नहीं हो सकता क्योंकि मैं उसके साथ हूँ। लियो, अपने प्रियजन की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका खतरे से दूर रहना है ना? हम, लगता है मार्कस को एमी को खतरे से बचाने का भरोसा नहीं है। अगर मैं हूं तो मैं उसे अच्छे तरीके से बचा सकता हूं। आखिर ये लोग यहां किस लिए आए हैं? भले ही एमी उन्हें पकड़ रही हो, लेकिन अगर भविष्य के सत्ताधारी लॉर्ड्स इस तरह की हरकत करेंगे तो क्या इस देश का भविष्य खतरे में नहीं पड़ जाएगा? इस तरह मंत्रमुग्ध रिवर्स हरम के खंडहर अन्वेषण की तारीख, जो स्वतंत्र अनुसंधान के लिए एक खंडहर सर्वेक्षण भी थी, मेरे लिए तीव्र मानसिक क्षति के साथ समाप्त हुई। हम, लेकिन खेल में अनास्तासिया एमी पर काफी व्यंग्य कर रही थी, जो युवराज से चिपकी हुई थी। लगता है कुछ हुआ ही नहीं। खैर, लंबी गर्मी की छुट्टियां, जो छोटी लग रही थी, पल भर में खत्म हो गईं। उस खोजबीन के बाद मुझे एक रिपोर्ट लिखनी थी, इसलिए मेरी बाकी छुट्टियां उसी में बीत गईं। आखिरकार मैं एल्विन गांव या पवन पर्वत की कालकोठरी नहीं जा सका। कारण, अनास्तासिया का उत्साह इससे संतुष्ट नहीं था। अब मैं बात कहां से शुरू करूं? जैसा कि मैंने सोचा था, चलो अन्वेषण पूरा होने के अगले दिन से शुरू करते हैं। अन्वेषण के अगले दिन अनास्तासिया ने मुझे स्कूल के गेट के सामने बुलाया और फिर हम एक खूबसूरत गाड़ी में सवार हुए जिस पर रामस्लेट परिवार का प्रतीक चिन्ह लगा था। आने के लिए धन्यवाद, साथ ही कल हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भी धन्यवाद, इससे वाकई मदद मिली। कोई बात नहीं, अब रिपोर्ट बनाने के विषय पर। हाँ, सबसे पहले मैंने एक कालकोठरी विशेषज्ञ, एक इतिहास विशेषज्ञ और अंततः उस खंडहर का अध्ययन करने वाले एक विशेषज्ञ से मुलाकात तय की है। हम उनका स्पष्टीकरण सुनेंगे। अरे, क्या हमें स्वतंत्र अनुसंधान के लिए इतना कुछ करना होगा? मैंने अनजाने में ही अपने विचार कह दिए, क्योंकि यह जूनियर हाई या हाई स्कूल स्तर का ग्रीष्मकालीन अवकाश निःशुल्क अध्ययन है। यह उस स्तर की रिपोर्ट लिखने के लिए किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के पास जाने जैसा है। क्या यह अतिशयोक्ति नहीं है? मैंने तो ऐसा ही सोचा था, लेकिन ऐसा लगता है कि अनास्तासिया के मामले में ऐसा नहीं था। खैर, एलन एक आम आदमी है, इसलिए इन चीजों के लिए आप लापरवाह हो सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, ये रिपोर्ट क्राउन प्रिंस, प्रिंस क्लाउड और हमारे देश के भावी उच्च कुलीनों के लिए है। खैर, भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें रखना तो बस उनके पूर्वजों की प्रसिद्धि और कड़ी मेहनत का नतीजा है। मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई क्षमता है। यदि आप आधे अधूरे मन से या गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब और कहां चूक जाएंगे। इसलिए हमें विशेषज्ञों की राय सुननी चाहिए, उन्हें अच्छी तरह समझना चाहिए और उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। मैं समझ गया, मुझे यकीन नहीं है कि स्कूल की रिपोर्ट किसी को कैसे कमतर साबित करेगी, लेकिन शायद ये शर्म की बात है या ऐसा ही कुछ है। ईमानदारी से कहें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि युवराज या कब्जा करने वाले लक्ष्य कम पड़ जाते हैं, लेकिन अनास्तासिया की सच्ची भावनाओं में सद्भावना छिपी है। तो फिर आइए इसे इस हद तक करें कि हर कोई प्रशंसा करे। फिर भी मैंने पिछले जन्म में एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। मैं ठीक रहूंगा। और इसी तरह अनास्तासिया ने मुझे सफलतापूर्वक इसमें शामिल कर लिया, इसलिए मैंने विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शिक्षकों के व्याख्यान सुनने का निर्णय लिया। फिर प्रत्येक विशेषज्ञ शिक्षक से व्याख्यान प्राप्त करने के बाद हम रॉयल पैलेस लाइब्रेरी गए और साहित्य की खोज की। इसके अलावा अनास्तासिया के साथ विषय वस्तु पर चर्चा की गई और एक उचित अकादमिक थीसिस के रूप में उसका सारांश तैयार किया गया। फिर हमने एक विशेषज्ञ शिक्षक से रिपोर्ट देखने को कहा, उनसे प्रतिक्रिया ली और उसे एक रिपोर्ट के रूप में तैयार किया। वैसे झुंझलाहट की बात है कि प्रिंस एंड कंपनी में से किसी ने भी इस रिपोर्ट को लिखने में मदद नहीं की। हमने कई बार मिलने और निमंत्रण भेजने का दिन तय किया, लेकिन हर बार हमें क्राउन प्रिंस के नाम से उनकी अनुपस्थिति का जवाब मिलता है। टीएल, मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि क्राउन प्रिंस ने दूसरों की ओर से उन्हें जवाब दिया है। इस मामले में चाहे अनास्तासिया ड्यूक की बेटी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे इतना मजबूर नहीं किया जा सकता। हमने तय किया कि गर्मी की छुट्टियां खत्म होने से एक दिन पहले हम रिपोर्ट युवराज को दिखाएंगे। वैसे मुख्य संपादक तो युवराज ही माने जाते हैं। खैर, उसका एक दर्जा है, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमारे द्वारा किए गए सभी कार्यों के बावजूद युवराज के शब्द निर्दयी थे। लंबा 3 मिनट में समझाओ ताकि मैं तुरंत समझ सकूं। मैं व्यस्त हूं। मुझे पता है, अगर तुम मेरे बॉस होते तो कैसा लगता। ये किसी थीसिस पढ़ने जैसा है। लेकिन तुम भी मेरी ही तरह एक छात्र हो, है ना? क्या इस उम्र में ऐसा बोलना ठीक है? मैं उस पर चिल्लाना चाहता था, लेकिन अगर मैंने ऐसा कहा तो मुझे राजद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया जाएगा। अपने गुस्से को सहन करते हुए मैंने इसे यथासंभव सरल तरीके से समझाया। मुख्य बिंदुओं को समझाने के बाद युवराज अच्छा काम कहते हुए चले गए। मुझे लगता है कि यह आश्चर्यजनक था कि मैंने उसकी पीठ पर चिल्लाया नहीं। महामहिम ऐसे ही व्यक्ति हैं। मुझे खेद है, लेकिन कृपया इसे सहन करें। यह आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली था कि अनास्तासिया ने यह बात हार मानने वाली नजर से कही। ये भाव युवराज के प्रति प्रेम और लगाव को नहीं दर्शाता, जैसा कि खेल में दिखाया गया है। मुझे तो यह एक ऐसी लड़की लगी जिसने हार मान ली और अपनी नियति को एक राजनीतिक विवाह का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लिया। वैसे इस तरह से पूरी की गई रिपोर्ट को स्वाभाविक रूप से बहुत प्रशंसा मिली। जैसा कि महामहिम क्राउन प्रिंस से अपेक्षित था, जैसा कि प्रिंस क्लाउड से अपेक्षित था, वगैरह। अनास्तासिया की भी प्रशंसा हो रही थी, लेकिन मेरे साथ किसी सुनहरी मछली की तरह व्यवहार किया गया। मुझे नहीं पता कि अफवाहें कैसे फैलीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे मैं युवराज की सवारी पर चढ़ गया हूं और सिर्फ उसका नाम ही दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में भी मुझे बहस करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूं और मेरा प्रतिद्वंद भी एक कुलीन वर्ग का है। मैं सोच रहा था कि ये स्कूल किस लिए है। कम से कम मुझे तो यकीन है कि इसके दर्शन में मानवीय व्यवहार वगैरह तो है ही नहीं। और हाँ, सिर्फ अनास्तासिया ही कह रही है कि मैंने चर्चा में मुख्य भूमिका निभाई थी, लेकिन मौजूदा हालात ये हैं कि क्राउन प्रिंस को खुश करने की कोशिश करने वालों की आवाज़ें कहीं ज्यादा तेज हैं। खैर, मुझे इस तरह की जिंदगी अभी आधे साल और झेलनी पड़ेगी। अगर मैं इसे आधे साल तक झेलता रहा और प्रिंस एंड कंपनी को द्वंद्व युद्ध में धूल चटा दी, तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। इस बात की पूरी संभावना है कि इसके बाद मुझे फांसी दे दी जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि अनास्तासिया के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, इसलिए सबसे बुरी स्थिति में भी मुझे लगता है कि मैं और मेरी माँ बच निकलने में सफल हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को समझाते हुए मैंने इस गंदगी भरे स्कूली जीवन को सहने का अपना दृढ़ संकल्प दोहराया। अब पतझड़ आ गया है। पतझड़ की बात करें तो ये सांस्कृतिक उत्सवों का मौसम है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी दुनिया में सांस्कृतिक उत्सव क्यों होता है। खैर, यह एक जापानी ओटो में खेल है, तो जाहिर है इस स्कूल में भी एक सांस्कृतिक उत्सव होगा। खेल में यह एक ऐसा आयोजन था जिसमें एमी ने कैप्चर टारगेट के साथ मिलकर एक प्रदर्शनी आयोजित की थी। इस बार यह रिवर्स हरम रूट जैसा लग रहा है, इसलिए ऐसा लगता है कि सभी कैप्चर टारगेट एमी और खलनाई का कुछ न कुछ प्रदर्शन करेंगे। वैसे इस सांस्कृतिक उत्सव में आप अपनी सामान्य समझ के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसा लगता है कि इसका आपके ग्रेड से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी इसमें भाग लेना अनिवार्य है। चूंकि स्वतंत्र शोध ने मेरी भावना पर बहुत अधिक प्रभाव डाला है और जिस कार्यक्रम को मैं इस सांस्कृतिक महोत्सव में रोकना चाहता हूं वह गलियारे में होता है, इसलिए इस बार एमी के समूह के साथ शामिल होने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ऐसी घटना के बाद अनास्तासिया भी शायद मुझसे मदद नहीं मांगेगी। ऐसा सोचते हुए मैंने स्वयं ही ओकमांस की कतार बनाने का काम शुरू करने का निर्णय लिया और आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की। मैं एक साहसी व्यक्ति हूं, इसलिए किसी और का शिकार करना और उसका विध्वंसक प्रदर्शन करना मजेदार होगा। जब मैं इस बारे में सोच रहा था, अनास्तासिया ने मुझे फोन किया। अरे एलन, हाँ क्या बात है? क्या आपने तय कर लिया है कि सांस्कृतिक महोत्सव में आप क्या करेंगे? अगर नहीं तो आप महामहिम की फिर से मदद क्यों नहीं करते? वाह, सच में उसके बाद से हमने ज्यादा बात नहीं की थी, इसलिए मुझे लगा था कि अब मुझसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये तो हैरान करने वाला था। मुझे खेद है, दरअसल मैंने पहले ही ओकमास की कटार की दुकान के लिए आवेदन जमा कर दिया है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या ऐसा है? मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं ये कहने के लिए नतमस्तक हूँ, लेकिन ये भाव जो आमतौर पर स्थिर रहता है थोड़ा उदास लग रहा है। कहीं ना कहीं मुझे अपराध बोध हो रहा है। आह, लेकिन अगर यह बिल्कुल जरूरी हो तो? नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसे खा लूंगा क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है। हाँ धन्यवाद। इसके बाद अनास्तासिया पीछे मुड़ी और चली गई। नहीं, लेकिन एमी भी संदिग्ध है, इसलिए उस पर नजर रखना बेहतर होगा। ऐसा सोचते हुए मैंने सबसे बुरे हालात को रोकने के लिए कदम उठाने का फैसला किया। तारांकन 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 तारांकन। आज सांस्कृतिक महोत्सव से 3 दिन पहले का दिन है और मैं अनास्तासिया के समूह के कार्य कक्ष में घुस गया हूँ। ऐसा लगता है कि क्राउन प्रिंस एंड कंपनी ने इस देश की शहरी संस्कृति को प्रदर्शित करने का फैसला किया है। संक्षेप में ऐसा लगता है कि उन्होंने एक ऐसी जगह बना ली है जहां एमी सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। और बिल्कुल खेल की तरह क्राउन प्रिंस और उनकी टीम एक समूह में प्रदर्शनी लगा रहे हैं, लेकिन आप इसे किसी भी नजरिए से देखें, अनास्तासिया बस इधर उधर घूम रही है। ऐसा लगता है कि एमी और पकड़े गए लोगों ने ही सब कुछ पूरी तरह से तय कर लिया है। अनास्तासिया को चुनने का अधिकार नहीं दिया गया है और उसे बूथ का प्रबंधन करने के लिए कहा गया है। मुझे लगता है कि भविष्य के लिए चाहे मुझे वहां कितना भी रहना पड़े, मैं भी बीमार हो जाऊंगा। और हाल ही में जब कोई कैप्चर टारगेट नहीं होता, जहां एमी और अनास्तासिया अकेली होती हैं, तो एमी व्यंग्यात्मक हो जाती है। अब भी उसने बिना ये देखे कि मैं उन्हें छुपाकर देख रहा हूं, फिर से व्यंग्य शुरू कर दिया। अनास्तासिया सामा, आप अभी भी यहां हैं? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। क्योंकि यह इतना प्यारा नहीं है, इसलिए काल सामा आपसे प्यार नहीं करते, आपको पता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हमारा जुड़ाव ऐसा नहीं है, ये देश के लिए है। अच्छा हुआ कि मैं इसे देख रहा था। जाहिर है ये कार्यक्रम एक अप्रत्याशित जगह पर शुरू हुआ। एह, लेकिन उस तरह का काल सामा प्यारा दिखता है, क्या आपको नहीं पता? मुझे यकीन है काल सामा और नागरिक समझते हैं कि एक सुंदर रानी अधिक अच्छी होती है, क्या आपको नहीं लगता? जब मैंने ये सुना तो ऐसा लगा जैसे इस कमरे की हवा ठंडी हो गई हो। हालांकि हवा ठंडी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि मौसम बदल गया हो। हवा खुद शारीरिक रूप से ठंडी थी। सबूत के तौर पर अनास्तासिया के चारों ओर ठंडी हवा घूम रही है। ओह, क्या हुआ? ये ठीक नहीं है। देखो, भावी रानी मुस्कुरा रही है। इतना कहकर एमी ने मुस्कुराते हुए पोज दिया और अनास्तासिया को उकसाने के लिए गर्दन हिलाई। उसके हाथ भींचे हुए थे और सिर्फ तर्जनी उंगलियां इस तरह उठी हुई थीं कि उंगलियां उसके बाएं और दाएं गालों पर रखी हुई थीं। वह तथाकथित गाल और उंगली वाली इश्कबाजी मुद्रा में थी। इसके अलावा ये भी डरावना था कि एमी का चेहरा तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें नहीं। एमी, क्या तुम मेरा अपमान कर रही हो? नहीं अनास्तासिया सामा, तुम मुझे डरा रही हो। कल्पना कीजिए कि आप ऐसा किसी को गुस्सा दिलाने के लिए कर रहे हैं। मैं किनारे से देखकर निराश हो रहा था। अनास्तासिया, जो इस पर चिल्ला नहीं रही है, बहुत अच्छी है। हालांकि खेल में बातचीत ज्यादा फूली हुई थी, यह इतनी बुरी बातचीत नहीं थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह अनास्तासिया को गुस्सा दिलाकर उस पर हाथ उठाने के लिए मजबूर करना चाहती है। ये दुख की बात है कि मैं इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, इसलिए मैं इसे देखता रहता हूँ। अनास्तासिया जोर से आह भरती है और अपना उपदेश शुरू करती है, जो मुझे नहीं पता कि उसने उसे कितनी बार बताया था। सुनो, इस देश में एक सामाजिक स्थिति व्यवस्था है, इसे एक ही स्कूल के छात्र भी नहीं बदल सकते, इसलिए अपना व्यवहार ठीक रखो। हालांकि एमी बिना किसी हिचकिचाहट के तर्क देती है। यह अजीब है क्योंकि अनास्तासिया सामा और मैं दोनों इंसान हैं। ईश्वर के सामने सभी समान हैं, भगवान के सामने यही कहानी है। मैं तो बस तुम्हें अपनी हैसियत के हिसाब से व्यवहार करने को कह रहा हूँ। सबसे पहले तुम खुद को क्या समझती हो? ऐसे मर्दों के साथ लिपटना जिनकी मंगेतरे हैं, ऐसा कुछ मत करो जिससे दूसरे गुमराह हों। शायद अनास्तासिया का धैर्य खत्म हो रहा था क्योंकि उसकी आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। ऐसा नहीं है, मैं और काल सामा दोस्त हैं। मार्क्स, लियो, ऑस्कर, क्लाउड भी मेरे सबसे महत्वपूर्ण दोस्त हैं। मेरे दोस्तों को दोष मत दो। मैं कह रही हूं कि यह अजीब है। बिना मंगेतर वाले आदमी को चुनो। मैं अनास्तासिया सामा जैसे किसी बाहरी व्यक्ति को हमारी दोस्ती में हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। क्या जब हवा ठंडी हो गई तो शोर सुनकर कब्जा करने वाले लोग दौड़कर वहां पहुंचे। अरे अनास्तासिया, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम दोनों तैयारी नहीं कर रही थी? क्या मैंने तुम्हें झगड़ा न करने की चेतावनी नहीं दी थी? क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती, जबकि तुम अक्सर बातें करते हुए खुद को अच्छा दिखाती हो? महामहिम, यह महिला है कालसामा। मैं तो बस यही चाहता था कि सब अच्छे से मिलजुल कर रहें, लेकिन अनास्तासिया सामा मेरे साथ रुकी थी। अरे, एमी के गलत स्पष्टीकरण पर अनास्तासिया ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन क्राउन प्रिंस अनास्तासिया पर चिल्लाया, चुप रहो, अपना बेशर्म मुंह बंद करो, यह आदेश है। गु तसु, मेरे और तुम्हारे बीच का रिश्ता तब है जब हम बाहर होते हैं। उस रिश्ते को स्कूल में मत लाओ, समझा? अनास्तासिया ने फिर एक जमे हुए भाव के साथ अपना काम फिर से शुरू कर दिया। तारांकन 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 तारांकन। फिर शाम को एमी के साथ सभी पकड़े गए लोग कमरे से बाहर चले गए। अनास्तासिया, जो कुछ देर से जड़वत भाव से काम कर रही थी, अपना सारा सामान लेकर कमरे से बाहर चली गई। शायद वह आराम करने जा रही थी। उसके बाद मैं चुपके से बाहर निकल जाता हूँ, और जब मैं थोड़ी देर गलियारे में चला तो मैंने देखा कि एमी दीवार से पीठ टिकाए खड़ी है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे अनास्तासिया उसके सामने से गुजरते हुए भड़क उठी। क्या बेवकूफ हो, अपनी मंगेतर को लूटे जाने पर तुम्हें कैसा लग रहा है? ये शब्द सुनते ही अनास्तासिया की आंखें चौड़ी हो गईं। फिर चेहरा लाल होते हुए उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। फ्यू कुशन, उस समय मैंने अपना छुपा हुआ आवरण हटाते हुए जितनी जोर से हो सकता था उतनी जोर से छींक मारी। आश्चर्यचकित अनास्तासिया अपना दाहिना हाथ हिलाए बिना ही अपनी मुद्रा में रुक गई। ओह ओह, अनास्तासिया सामा और एमी सामा भी, आह शायद आप बात कर रहे थे, माफ कीजिए। जब मैंने ऐसा कहा तो मैं वहां से ऐसे भाग गया जैसे मैं वहां मौजूद था। मैंने अनास्तासिया की हरकतों को एक बेहतरीन प्रदर्शन के साथ रोक दिया, जो मुझे लगता है कि ऑस्कर के लायक है। मैं परछाई में नजरों से ओझल हो गया और छिपाना फिर से चालू कर दिया, फिर चुपके से वापस आया और निगरानी फिर से शुरू कर दी। आपसे कुछ भी कहना व्यर्थ लगता है, लेकिन याद रखिए, महामहिम इस देश के भावी राजा हैं। आप जो राजपरिवार और कुलीन वर्ग की भूमिका नहीं समझते, उनके लिए उपयुक्त नहीं है। महामहिम के पास मत जाए, अनास्तासिया ने ऐसा एक स्थिर भाव से कहा और एमी के गाल पर हाथ मारे बिना ही चली गई। और एमी वहीं पर खड़ी होकर अफसोस से उसकी पीठ की ओर देखती है। इसका क्या मतलब है? एलन नाम की उस भीड़ को एक्स्ट्रा मोड में भी नहीं दिखना चाहिए। मन ही मन बुदबुदाते हुए एमी भी वहां से चली गई, और उसके कुछ ही देर बाद प्रिंस एंड कंपनी एमी का पीछा करते हुए मेरे सामने से गुजर गई। लेकिन एक्स्ट्रा मोड क्या होता है? क्या इसका मतलब है कि कोई ऐसा मोड था जो मैंने नहीं खेला? लेकिन विकी पर भी ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। विषय वस्तु काफी अलग थी, लेकिन यह वह घटना थी जिसे मैं रोकने की कोशिश कर रहा था। खेल में गुस्से में आकर अनास्तासिया एमी के गाल पर थप्पड़ मार देती है, और इसे हैरान होकर एमी नीचे झुककर रोने लगती है। तभी क्राउन प्रिंस और रास्ते में पकड़े जाने का लक्ष्य प्रकट होता है और एक तरफा अनास्तासिया पर दोष मढ़ देता है, और अनास्तासिया और क्राउन प्रिंस के बीच का रिश्ता टूट जाता है। खैर, ऐसा लगता है कि यह पहले ही ध्वस्त हो चुका है। अब जब मैं किसी और को नहीं देख पाता तो मैं अपना आवरण हटा लेता हूँ, और इस बार एक बात साफ है कि जैसी उम्मीद थी, एमी बिल्कुल मेरी तरह ही है। इस बार मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ, संक्षेप में, वह महिला जिसने वह खेल खेला है एमी के रूप में पुनर्जन्म ले चुकी है और रिवर्स हरम मार्ग पर कब्जा करने के लिए खेल परिदृश्यों का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है। तो बस इतना ही, एक औरत होने के नाते खूबसूरत मर्दों से घिरा होना शायद किसी सपने जैसा हो। अगर मैं किसी लड़की वाले गेम की मुख्य पात्र के रूप में पुनर्जन्म लेती तो शायद मैं हरम का रास्ता चुनती। तथापि मुझे ये पसंद नहीं है। यदि एमी अपने कब्जे वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ती है तो राजधानी शहर का विनाश उसका इंतजार कर रहा है। यह उस खेल की दुनिया नहीं है, बल्कि वास्तविकता है जिसमें माँ, मालिक, वरिष्ठ साहसी मोनिका सान और मेरी देखभाल करने वाले सभी लोग रह रहे हैं। अच्छा, मैं इसे पूरी तरह से करूंगा, मैंने अपना दृढ़ संकल्प दोहराया। एमी से संबंधित विभिन्न बातें थीं, इसलिए ये सुरक्षित है या नहीं ये बाद में पता चलेगा। अब ये सांस्कृतिक उत्सव का दिन था। आखिरकार आसमान सफेद हो रहा है, और अब मैं अल्टमंट के पास ऑक्स के महान कालकोठरी में हूँ। मैं इतनी ठंड के समय यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि ओर्क मांस ले सकूँ जिसे मैं सांस्कृतिक महोत्सव में तोड़ूंगा। अब मैंने एक अपेक्षाकृत छोटे ऑक को अकेले देखा, इसलिए उसका शिकार करने के लिए मैं चुपके से उसके पास गया और निकोब के साथ उसका सिर काट दिया, फिर जल्दी से उसका खून निकाल दिया। मैंने शिकार को ज्यों का त्यों उठाया और उसे ब्यूटर से रस्सी से बांध दिया। फिर ब्यूटर को स्टॉट करके मैं सीधा ऊपर की ओर उड़ गया और ऑक को लटकाए हुए तुरंत आसमान में उड़ गया। मुझे यकीन है कि किनारे से देखने पर यह एक अवास्तविक दृश्य है, लेकिन हवाई जहाज से इसे ले जाने का यही एकमात्र तरीका है। मुझे एक बड़े उद्देश्य के लिए कुछ चीजों का त्याग करना पड़ा। अभी पतझड़ है, इसलिए तापमान ज्यादा नहीं है, ठंड है। अगर मैं आसमान के ऊपर जाऊं, तो काफी ठंड होती है, इसलिए मुझे मांस के सड़ने की कोई चिंता नहीं है। बल्कि, मुझे तो बस यही चिंता है कि वह जम जाएगा। मैं पूरी गति से ब्यूटोर से उड़ान भरकर कुछ घंटों की उड़ान के बाद निजी लर्डेन हवाई अड्डे पर पहुंचा। फिर जल्दी से ऑक को उठाकर स्कूल की ओर दौड़ा। मैंने शिकार किए हुए ऑक को अपनी दुकान के सामने लटका दिया है। अभी तो 10 बजे हैं। तोड़ने का शो 11 बजे शुरू होने वाला है, इसलिए तब तक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए यही चल रहा है। कुछ समय बाद ही लोग ऑर्क के चारों ओर इकट्ठा होने लगते हैं। अरे वह क्या है? यह एक ऑर्क मांस कटार स्टाल है। क्या ये राक्षस नहीं है? ऐसा लगता है कि यह आम लोगों का भोजन है। इस स्कूल में ऐसा क्यों है? चूंकि केवल अभिजात वर्ग या अमीर बच्चे ही स्कूल जाते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि एक पूरा ऑक काफी चौंकाने वाला है। मैं लगभग 11 बजे से ऑक विखंडन शो शुरू करूंगा, कृपया आकर इसे देखें। इसका विज्ञापन करते समय मैंने अलग से तैयार की गई ऑर्क लोइन को सीख पर चढ़ाया और उसे चारकोल पर भूनना शुरू कर दिया। अरे वैसे ऑर्क के मांस का स्वाद लगभग सुअर के मांस जैसा ही होता है। हालांकि वे दो पैरों पर चलते हैं, लेकिन दिखने में सुअर जैसे ही होते हैं। उनमें इंसानों जैसी भावनाएं नहीं होती। इसके अलावा उनका मांस खाने में अच्छा होता है और फर के साथ बेचने पर अच्छी कीमत मिलती है, इसलिए साहसी लोग उन्हें अच्छा शिकार मानते हैं। ओह हाँ, हालांकि यह अतिरिक्त जानकारी है, ग्रामीण क्षेत्रों के एक वरिष्ठ साहसी के अनुसार सुअरों की विघटन विधि ऑक्स के समान है। चूंकि ऑक्स राक्षस हैं, इसलिए उन्हें पशुधन में परिवर्तित करना संभव नहीं है, इसलिए उनका मांस केवल अल्टोमुंड और उसके आसपास ही सस्ते में खाया जा सकता है, जो ऑक्स के महान काल कोठरी के पास है। और चूंकि ऑक्स शाही राजधानी के आसपास बहुत कम दिखाई देते हैं, इसलिए शाही राजधानी में ऑक्स का मांस खाने की कीमत सुअर के मांस की कीमत से 10 गुना ज्यादा है।
उस स्थिति में जो लोग ऑर्क मांस खाने की जहमत उठाते हैं, भले ही इसका स्वाद सुअर के मांस जैसा हो, वे संभवतः इसके काफी शौकीन होते हैं। खैर, शाही राजधानी के मानक के अनुसार यह उच्च श्रेणी का ऑर्क मांस है, लेकिन चूंकि यह एक सांस्कृतिक उत्सव है, इसलिए मैं इसे बिना लाभ के 100 सेंट प्रति कटार के हिसाब से बेचूंगा। ऐसे अवसर पर मुझे पैसा कमाने में कोई रुचि नहीं है। अब कमर का मांस पक चुका था और उसमें से एक स्वादिष्ट गंध आ रही थी। मैं स्वाद को समायोजित करने के लिए उस पर हल्का नमक और काली मिर्च छिड़कता हूँ, फिर उसे आग से दूर रख देता हूँ। ये भुना हुआ है, 100 सेंट प्रति सींग, कैसा है? हालांकि दूर से देखने के अलावा कोई पास नहीं आया। जब मैंने देखा कि मांस ठंडा हो रहा है, तो मैंने नए सीक वाले बैच को ग्रिल करना शुरू कर दिया और ठंडे मांस को वैसे ही मुंह में डाल लिया। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। अब सोचती हूँ तो मैं बहुत जल्दी में थी और सुबह से कुछ नहीं खाया था। मांस का रसीलापन, जिसका स्वाद सुअर के मांस जैसा है, मेरे मुंह में फैल जाता है। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि वो कुछ स्वादिष्ट खा रहा है? अरे लेकिन ये तो राक्षस है, क्या ये ठीक है? मैं उनकी फुसफुसाहट सुन सकता हूँ। एलन, आपने तो शुरू कर दिया है, क्या मुझे एक सीख मिल सकती है? धन्यवाद। ये कहने के बाद जब मैं उस व्यक्ति से मिलने के लिए मुड़ा, तो मैंने अनास्तासिया को उसके लंबे नीले बालों और नीली आंखों वाले साथियों के साथ पाया।
अनास्तासिया सामा और ओम, यह मार्गरेट है, मार्गरेट वॉन अल्टमंट। मैं ऑर्क मांस के स्वाद को लेकर बहुत चिंतित रहती हूँ, तुम्हें पता है। क्या बात है, वह अल्टमंट के स्वामी की बेटी है, जहाँ ऑक्स का महान काल कोठरी स्थित है। मेरी बदतमीजी माफ करना मार्गरेट सामा। ठीक है, तो मैं 11 बजे ऑर्क मांस तोड़ने का शो शुरू करूंगा। यह ऑर्क बहुत ताज़ा है क्योंकि यह आज सुबह तक जिंदा था, इसलिए मुझे यकीन है कि आप संतुष्ट होंगी।
ओह, यहाँ आसपास कोई ऑर्क नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, लेकिन मुझे यह एक गुप्त रास्ते से मिला। यह एक साहसी व्यक्ति का विशेषाधिकार है। इस समय मैं यह नहीं बता सकता कि मैंने इसे हवाई मार्ग से भेजा है। फिलहाल मैं इस बात का फायदा उठा सकता हूँ कि इसका समाज पर गहरा असर पड़ेगा और अगर मैं इसे युद्ध में इस्तेमाल करता हूँ तो अराजकता फैल सकती है, इसलिए मुझे स्थिति पर अच्छी तरह विचार करने के बाद ही इसका खुलासा करना होगा। क्या ऐसा कुछ है? अच्छा ठीक है। ओह, वह ऑर्क मांस, क्या वह अच्छी गुणवत्ता का नहीं है? ये शाही राजधानी में शायद ही देखने को मिलता है ना? ये उच्च श्रेणी का मांस, जैसा कि मार्गरेट सामा से उम्मीद थी, आपकी आंखें अच्छी हैं। यह अल्टमंट से उच्च श्रेणी का ऑर्क मांस है। मैं विशेष श्रेणी का मांस तैयार नहीं कर सका, इसलिए मैं केवल उच्च श्रेणी का ही मांस दे सकता हूँ। लेकिन फिर क्या 100 सेंट प्रति सीख बहुत सस्ता नहीं है? अगर कोई इसे शाही राजधानी में खाना चाहता है, तो उसे इसे खाने के लिए 10,000 सेंट का भुगतान करना होगा, आप जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक सांस्कृतिक उत्सव है। मैं सभी को साहसी लोगों के काम के बारे में समझाना चाहता था। क्या ऐसा है? मैं प्रभावित हूँ, फिर मैं भी एक सीख ले लूँ। धन्यवाद, मैं सीख रखता हूँ और ग्रिल करना शुरू करता हूँ। जब चर्बी कोयले की आग पर गिरती है और हल्की सी आवाज करती है तो एक मीठी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। इसके बाद अनातासिया मार्गरेट से ऊंची आवाज में बात करती है। मार्गरेट, आप ओर्क्स से बहुत परिचित हैं। जैसा कि अपेक्षित था, आप अभी भी अल्टमंट काउंटी में ओर्क्स का मांस खा रही हैं, है ना? मार्गरेट ऊंची आवाज में जवाब देती है, हाँ बिल्कुल, यह मेरे अल्टमंट की विशेषता है। मुझे लगता है कि ओर्क का मांस सुअर के मांस से ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है। इसके अलावा, शाही राजधानी में उच्च श्रेणी का लोइन आसानी से नहीं मिलता। आखिरकार ये दुर्लभ है, इसे खाने में कोई नुकसान नहीं है। इसके बाद जो लोग दूर से बातचीत देख रहे थे वे भी उनके साथ ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं। अनातासिया सामा और मार्गरेट सामा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हमने अभी एक दूसरे से बात की, तुम्हें पता है? ऐसा लगता है कि वे अपनी बातचीत के बारे में न सोचने का इशारा कर रहे हैं, लेकिन आप चाहे जैसे भी देखें, उन्होंने जानबूझकर जोर से बात की ताकि उनकी बातचीत से ये लगे कि यह मांस संदिग्ध नहीं है। इस तरह तैयार कमर का मांस पलक झपकते ही बिक गया। इन दोनों की बदौलत ऑक विखंडन शो ने भी भारी भीड़ को आकर्षित किया तथा सांस्कृतिक महोत्सव के समाप्त होने का इंतजार किए बिना ही ऑक के बाकी टिकट बिक गए। लेखक का नोट, पढ़ने के लिए आपका शुक्रिया। मैंने देखा कि 4,000 से अधिक पाठकों ने इसे बुकमार्क किया है। मैं इस सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए आभारी हूँ। जब मैं सोचता हूँ कि इतने सारे लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो मुझे तनाव महसूस होता है। मैं इसके लिए स्वयं को समर्पित करता रहूंगा, इसलिए मुझे आशा है कि आप अंत तक इसके साथ बने रहेंगे। राज्य की सहायता प्रणाली के साथ प्रदर्शनी को दिया जाएगा, जिसका प्रतिनिधित्व महामहिम राजकुमार कार्लहेंस बार्टल वॉन सेंट्रेरन और उनका समूह करेंगे। ताली 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 ताली, हाँ मुझे पता था, वैसे भी यह एक फिक्स रेस थी, बेकार। महामहिम की प्रदर्शनी उन लोगों पर केंद्रित है जो आम लोगों की तुलना में ज्यादा गरीब जीवन जीते हैं और साक्षात्कारों के जरिए उनकी जीवन स्थितियों पर प्रकाश डालती है। ये राज्य की भूमिका और भविष्य में उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस पर भी विचार करती है। इसमें सामाजिकता के तत्वों का गहन मूल्यांकन किया गया है। हूँ, वह पतली सामग्री कहाँ है? मैं मन ही मन कोसता हूँ। मुझे यकीन है कि अब मेरा चेहरा बदसूरत हो गया है। मैंने ऐसा ही सोचा और कुछ देर के लिए मैंने अपना चेहरा नीचे कर लिया ताकि कोई देख न सके। फिर पकड़े गए लक्ष्य और एमी युवराज के नेतृत्व में मंच पर आते हैं और पुरस्कार ग्रहण करते हैं। बेशक अनातासिया का कोई चित्र नहीं है, जिसे कल बाहर निकाल दिया गया था। तो फिर मैं प्रतिनिधि क्राउन प्रिंस से सुनना चाहूंगा। ये कार्लहेंस है, मुझे खुशी है कि मैंने ग्रैंड प्राइज जीता। सबसे पहले मैंने एमी के विचार से यह विषय चुना। हम राजघराने और कुलीन वर्ग के लोग हमेशा कमजोर लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद रहते हैं, इसलिए हमने ये प्रदर्शनी यथास्थिति को उजागर करने के लिए लगाई और यह सोचने के लिए कि हम इससे क्या कर सकते हैं। हम अपने प्रतिष्ठित हाई स्कूल से भी स्नातक होंगे और ऐसे इंसान बनेंगे जिन्हें लोगों के बीच सबसे ऊपर खड़ा होना है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह हमें ये सोचने का मौका देगा कि तब क्या करना है। बस इतना ही। धन्यवाद महाराज। ताली 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 ताली, यह बहुत ही कमजोर और आश्चर्यजनक रूप से शीर्ष से दिया गया अमूर्त भाषण है। कभी कभी जब मैं सोचता हूँ कि वह अगला राजा होगा तो मुझे गुस्सा आता है। क्या ये देश गंभीर संकट में नहीं है? सर्दी का मौसम है, पेड़ों के पत्ते पूरी तरह झड़ चुके हैं और राहगीरों के कपड़े सर्दी के लिए तैयार हैं। हमेशा की तरह मैं मूर्ति जीवन का आनंद ले रहा हूँ, लेकिन खेल का दौर धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। अब अगर मुझे याद है तो अनातासिया की निंदा की घटना अंतिम परीक्षा समाप्त होने के बाद हुई थी, इसलिए एक और घटना है जिसे उससे पहले रोका जाना चाहिए। यह एक ऐसी घटना है जो ओटोम गेम्स में आम है, जहां नायिका को खलनायिका और उसके साथियों द्वारा परेशान किया जाता है और फिर अंततः उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया जाता है। हालांकि खेल के विपरीत अनातासिया ऐसा कोई कृत्य किए बिना ही टिक जाती है और ऐसा लगता है कि मार्गरेट और अन्य साथी भी पीछे हट रहे हैं। ये स्पष्ट नहीं है कि अनातासिया एंड कंपनी खेल से अलग व्यवहार क्यों कर रही है, क्योंकि अनातासिया और उसके साथी एमी और मुझसे अलग हैं, जिनका पुनर्जन्म खेल के ज्ञान के साथ हुआ है। अगर नहीं तो उन्हें बेहतर व्यवहार करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि चाहे जो भी कारण हो, यदि इस टेम्पलेट इवेंट को रोक दिया जाता है तो अनातासिया का गलत कार्यों से कोई संबंध नहीं होगा। इसके अलावा खेल में एक और अंतर है, वह है अनातासिया और युवराज के बीच का रिश्ता। सांस्कृतिक उत्सव में हुई घटना के बाद से अनातासिया और युवराज के बीच का रिश्ता पूरी तरह से बिगड़ गया है। यह इतना बिगड़ गया है कि आमने सामने मिलने पर भी वे मुश्किल से ही बात करते हैं। मूलतः ये संबंध टूटना इस टेम्पलेट घटना के पूरा होने के बाद क्राउन प्रिंस द्वारा खलनायिका को डांट दिए जाने का परिणाम था। जैसा कि मैं गर्मियों की छुट्टियों से देख रहा हूँ, ऐसा लगता है कि अनातासिया ने क्राउन प्रिंस के प्रति आसक्ति का मंच छोड़ दिया है। अगर देश में स्थिरता आए तो रानी बनना ही बेहतर होगा। क्या अनातासिया के दिमाग में बस यही बात नहीं है? उसे ऐसे आदमी को त्याग देना चाहिए और अपनी खुशी तलाशनी चाहिए। मैं सोच रहा था कि शायद यह इस बात का सबूत है कि मैंने अनातासिया के साथ एक रिश्ता बना लिया है। हाँ, स्पष्ट कर दूं कि भले ही अनातासिया और क्राउन प्रिंस के बीच सगाई का मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए यह संभव है। पहली बात तो ये कि मैं उससे पहले बात भी नहीं कर सकता, और जब सगाई टूट जाएगी, तो क्या ड्यूक की बेटी अनातासिया को दूसरे देशों के रईसों और राजघरानों से शादी के प्रस्ताव नहीं मिलेंगे जो रामस्लेट परिवार से जुड़ना चाहते हैं? बदकिस्मती से, मेरे लिए वहां जाने की कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है कि मैं असलियत समझ चुका हूँ। इसके अलावा, मेरा असली मकसद अपनी माँ और उन लोगों की रक्षा करना है जिन्होंने मेरी देखभाल की, बस इसी से कभी समझौता नहीं किया जा सकता। अब यह आयोजन ठंडे, बरसात वाले दिन होना चाहिए, इसलिए तब तक हम इस पर नजर रखेंगे। तारांकन 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 3 दिन बाद, जब मैं कक्षा में गया तो देखा कि छात्राएं असामान्य रूप से इतनी जल्दी उपस्थित थीं और अफवाहों के बारे में कानाफूसी कर रही थीं। जब मैंने सुना, तो पता चला कि एमी को परेशान किया गया था, क्योंकि उसने लड़कियों के छात्रावास में जिस पेन की अच्छी तरह देखभाल की थी, उसे जला दिया गया था। इसके बाद एमी ने क्राउन प्रिंस से अपील की कि यह अनातासिया ने ही किया होगा। ऐसा लगता है कि जिस युवराज ने इसे निगला था, उसने अनातासिया को बुलाया और उसे गलियारे में ले गया। बेशक, मैं एक मूर्ति और एक पीछा करने वाला हूँ, इसलिए जब मैंने कक्षा छोड़ दी, तो मैं छिपाने का उपयोग करके छिप गया और अनातासिया एंड कंपनी की तलाश की। फिर मैं उस दृश्य में आया जहां क्राउन प्रिंस, एमी और कब्जा करने वाले लक्ष्य अकेले अनातासिया को घेरे हुए थे। अनातासिया, अब हार मान लो। तुम क्या सोच रही हो? दयालु एमी की कलम जलाकर उसे परेशान कर रही हो? महामहिम, मैंने ऐसा नहीं किया, और मैंने अपने दोस्तों से भी कहा है कि वे इस तरह की चीजें न करें। लेकिन स्थिति को देखते हुए, आपके अलावा कोई और नहीं हो सकता। यह सही है, मिस अनातासिया। एमी कितनी भी प्यारी क्यों न हो, ईर्ष्या करना बदसूरत है, आप जानती हैं। मानो क्राउन प्रिंस का समर्थन करने के लिए, प्रिंस क्लाउड ने अनातासिया को हास्यास्पद लहजे में चिढ़ाया। अनातासिया उन 6 लोगों को देखकर एक गहरी सांस लेती है। दूसरी ओर, एमी उन लक्ष्यों के पीछे छिप जाती है और अनातासिया को देखकर उसे उकसाने के लिए मुस्कुराती है। आह, मैं समझ गया, तो यह आप ही थे जिन्होंने इसे जलाकर यह स्थिति पैदा की। हालांकि, अनातासिया अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना ठंडी आवाज में बोलती है। मैं बिना सबूत के ऐसी बात नहीं सुनना चाहता, इसलिए माफ कीजिए, पाठ शुरू हो जाएगा। फिर झुककर अनातासिया चलने के लिए मुड़ती है, तभी लियोनार्डो उसका हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसके कदम रोक देता है। रुको, बात अभी खत्म नहीं हुई है। लियोनार्डो वॉन ज्यूक्स, मैंने तुम्हें मुझे छूने की अनुमति नहीं दी। तुम, एक विस्काउंट के बेटे, ने बिना अनुमति के मुझे, एक ड्यूक की बेटी को छूने की हिम्मत की। चुप रहो, अगर तुम दोषी करार दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्या ये चेतावनी थी? ये बुरी बात है कि आपने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। एमी को परेशान करने के लिए आपके अलावा और कोई नहीं हो सकता। इसके बाद भी अनातासिया के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले और वह लियोनार्डो को ठंडे भाव से देखती रही। नहीं, उन आंखों के पीछे शायद तिरस्कार छिपा हो। हालांकि, अगर यह इसी तरह रहा तो ये बुरा होगा। जब मैंने छिपाव को निष्क्रिय कर दिया, तो मैंने जानबूझकर जोर से कदम उठाए और अनातासिया के पास पहुंचा। बातचीत के दौरान आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ करना, कक्षा शुरू होने का समय हो गया है। इतना कहकर मैं घुटने टेक कर अपने स्वामी को धन्यवाद देता हूँ। छी, बहुत हो गया, चलो चलें। क्राउन प्रिंस के उस एक शब्द के साथ ही एमी का रिवर्स हरम कक्षा में वापस आ गया। एलन, तुम, अनातासिया सामा, समय हो गया है, कक्षा शुरू हो जाएगी। मैंने अनातासिया की बात बीच में ही रोक दी और जल्दी से कक्षा में वापस आ गया। उसके बाद दिन बीतते गए और एमी को अनातासिया द्वारा सीढ़ियों से नीचे नहीं धकेला गया। सटीक रूप से कहें तो एमी अपनी चालों से अनातासिया को सीढ़ियों पर बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनातासिया हर बार शिक्षकों या अपने साथियों का इस्तेमाल करके उसे माफ कर देती थी। टीएल, मैं दल बदल रहा हूँ, योजक चिन्ह ग्रेटर देन साथी। परिणामस्वरूप सेमेस्टर का अंत उस घटना के बिना ही हो गया जिसमें एमी को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया गया था। बेशक एक अंतिम परीक्षा भी थी और परिणाम पोस्ट किए गए थे। प्रथम स्थान अनातासिया क्लिनेल वॉन रामस्लेट 500, प्रथम स्थान एलन 500, तीसरा स्थान मार्गरेट वॉन अल्टमंड 491, चौथा स्थान इसाबेला वॉन लुइनबर्ग 456, पांचवां स्थान एमी वॉन ब्रेयस 451, छठा स्थान मार्कस वॉन बेन्स 441, नौवां स्थान क्लाउड जस्टिन डी वेस्टडेल 421, दसवां स्थान ऑस्कर वॉन विमलेट 419, उनतीसवें कार्लहेंस बार्टल वॉन सेंट्रेन 396, 38वां ग्लेन वीडबर्ग 379, 39वां स्थान लियोनार्डो वॉन जुकेस 261। इससे थोड़ी ताजगी महसूस होती है, नहीं, मैं इसे ठीक कर दूंगा, ये काफी ताजगी भरा लगता है। यह आपके लिए बढ़िया है, खेल में मानसिक रूप से परेशान अनातासिया का मनोबल टूट गया और वह एमी से अपनी कक्षा में पहला स्थान गंवा बैठी। नतीजतन वह और भी ज्यादा घिर गई, जिससे निंदा वाले मुकाबले में उसका धैर्य जवाब दे गया। इसलिए उसने द्वंद्व युद्ध का अनुरोध किया, लेकिन इस बार नतीजा उल्टा रहा। एमी ग्रेड में 5वें स्थान पर आ गई, अनातासिया पहले स्थान पर वापस आ गई तथा अनातासिया के साथी 3रे और 4थे स्थान पर पहुंच गए। इसके अलावा क्राउन प्रिंस कार्लहेंस, जो अपने बारे में इतनी प्रशंसा करते रहे हैं, को जो परिणाम मिला उसे नीचे से गिनने पर आसानी से पाया जा सकता है। और भी अधिक, लियोनार्डो भावी नाइट कैप्टन, जिसने अनातासिया को उसके झूठे आरोप स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी, लगातार दूसरी बार सूची में सबसे नीचे है। सही कार्य करता है। जब मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए बुलेटिन बोर्ड को देख रहा था तो अनातासिया ने मुझे पीछे से बुलाया। एलन, इस बार मैं नहीं हारा, अनातासिया की आवाज में उछाल है। मैं पीछे मुड़ता हूँ और अनातासिया की तारीफ करता हूँ। अनातासिया सामा को बधाई, आपको पूर्ण अंक मिले हैं। नहीं, क्या एलन का स्कोर भी परफेक्ट नहीं है? जैसी उम्मीद थी, बधाई हो। धन्यवाद, मैं अनातासिया को आज्ञाकारी रूप से नमन करता हूँ। एलन कुन, जैसी की उम्मीद थी, अच्छा काम किया। मार्गरेट सामा, 3रे स्थान के लिए बधाई। जब मैंने मार्गरेट की आवाज़ सुनी तो मैंने देखा कि मार्गरेट मुस्कुरा रही थी और अनातासिया की एक और सहेली के साथ खड़ी थी। भूरे बालों और गहरी आंखों वाला ये साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति, मेरा मानना है, वही था जिसने खेल में एमी को परेशान किया था। धन्यवाद, लेकिन थोड़े और प्रयास से मैं अनातासिया सामा के साथ पंक्तिबद्ध हो सकता था। हालांकि उसे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति संतोषजनक है। एलन, वो इसाबेला है, वह विस्काउंट लुइनबर्ग की बेटी है। इसाबेला, जैसा कि आप जानते हैं, एलन एक छात्रवृत्ति छात्रा है। इसाबेला सामा, आपसे मिलकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। आपसे मिलकर मुझे भी खुशी हुई। एलन सान, मुझे यकीन है कि अगले सत्र से हम एक ही कक्षा में होंगे। एलन, इसाबेला इस सत्र तक कक्षा बी में थी, लेकिन इस ग्रेड के साथ वह निश्चित रूप से कक्षा ए में होगी। सब ठीक रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। मैंने उनका अभिवादन करते हुए ऐसा कहा, लेकिन दुर्भाग्यवश यदि निंदा कार्यक्रम हुआ तो मैं ये स्कूल छोड़ दूंगा। मेरे सीने में अपराध बोध की एक अस्पष्ट भावना बनी रही। और उस रात शाही महल के बैंक्वेट हॉल में एक स्नातक सह पदोन्नति पार्टी आयोजित की गई, जिसमें कई मेहमानों और सभी छात्रों को आमंत्रित किया गया। अब दिसंबर आ गया है, इसलिए स्कूल में शीतकालीन अवकाश शुरू हो रहा है, जो आने वाले बसंत तक जारी रहेगा, जिससे लंबी छुट्टियां होंगी। ऐसा लगता है कि जिन अभिजात वर्ग के पास क्षेत्र हैं, वे मदद करने या खुद सीखने के लिए वापस आएंगे। खेल की भाषा में इसे स्तर बढ़ाने का समय माना जाता है। अब कुलीन वर्ग के बेटे बेटियां भोज कक्ष में इकट्ठा हो चुके हैं और वे आलीशान पोशाकें पहने एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। हालांकि इन शानदार पोशाकों और बातचीत का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपनी सामान्य वर्दी पहनी है और हमेशा की तरह मैं दीवार के पास खड़ी हूँ। जो भोजन उपलब्ध कराया गया है वह ठंडा और गरिष्ठ है, लेकिन चूंकि मुझे इसे दोबारा खाने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसका स्वाद लेने में समय लगाऊंगा। अनातासिया अपने दोस्तों के साथ है और एमी हमेशा की तरह राजकुमार और कंपनी के साथ है। मुझे थोड़ा दुख हुआ जब मैंने सोचा कि आज आखिरी बार ये दृश्य देखूंगा। जब पार्टी पूरे जोरों पर थी, हालांकि वहां शराब नहीं परोसी जा रही थी, प्रत्येक कक्षा के सर्वश्रेष्ठ छात्र की घोषणा की गई। सबसे पहले एक स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्र को बुलाया गया। उसने शिक्षा, जादू और तलवारबाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने कुछ शोध किया और एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के साथ मिलकर एक नया जादुई पत्थर विकसित किया। वो मंच पर गए, भाषण दिया और फिर न जाने क्यों राजकुमार को धन्यवाद देकर नीचे चले गए। पूरा मंच तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फिर हम नए छात्रों की बारी आई, हॉल में घोषणा की गई। नए छात्रों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार क्राउन प्रिंस कार्लहेंस बार्टल वॉन सेंटरन को दिया जाता है। जैसे ही नाम की घोषणा हुई, दर्शक तालियों से गूंज उठे। हालांकि तालियां बजाने वालों के चेहरों के भाव अलग अलग थे। कुछ दिल से बधाई दे रहे थे, कुछ निराश थे और कुछ ऐसे थे जिन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस दिखावे के लिए तालियां बजा रहे थे। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन सा मार्ग है, युवराज को हमेशा यहां बुलाया जाता है और मंच से खलनायक की निंदा खेल में घटना है। युवराज ने उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं, विशेष रूप से तलवारबाजी और जादू में, और वे अकादमिक विशेषज्ञों के साथ गहन शोध में शामिल रहे हैं। साथ ही सामाजिक मुद्दों पर भी गहन शोध किया है। ये पुरस्कार उनकी इन्हीं उपलब्धियों के सम्मान में दिया जाएगा। क्राउन प्रिंस मंच पर गए और पुरस्कार ग्रहण किया, मानो ये स्वाभाविक बात हो। फिर वो मुड़ा और मंच से हमारी ओर देखने लगा। आप सभी का धन्यवाद, लेकिन यह ऐसा काम नहीं था जो मैं अकेले कर सकता था। अब जिन्हें बुलाया जा रहा है वे मंच पर आए। क्लाउड जस्टिन डे वेस्टडेल, आप बारीकियों पर अपनी अद्भुत नज़र से मुझे हमेशा चकित करते रहते हैं। कृपया मेरे अच्छे दोस्त बने रहें। हाँ, मार्कस वॉन बेन्स, आप जादू में मेरे प्रतिद्वंद्वी हैं, लेकिन साथ ही, आपके शांत निर्णय ने हमेशा मेरी मदद की है। हाँ, लियोनार्ड वॉन ज्यूक्स, आप हमेशा मेरी तलवार रहे हैं, और मैं आपके अथक प्रयासों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हाँ, ऑस्कर वॉन विमलेट, चीज़ों का असली मूल्य पहचानने की आपकी क्षमता मुझे हमेशा चकित करती है। मैं आप पर भरोसा करता हूँ कि आप अपना अच्छा काम जारी रखेंगे। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। सभी पकड़े गए लक्ष्य मंच पर आ जाते हैं, और एक क्षण रुकने के बाद, राजकुमार अपना मुंह खोलता है। एमी वॉन ब्रेयर्स, मुझे लगता है कि आपसे मिलने के बाद से मैं एक इंसान के तौर पर काफ़ी आगे बढ़ गया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। हाँ, एमी खुशी खुशी मंच पर दौड़ी और राजकुमार की बाहों में समा गई, हालांकि कई मेहमानों ने उसके इस अनोखे व्यवहार पर नाराजगी जताई। मेरी यह उपलब्धि केवल उनकी मदद से ही संभव हुई। मैं इसे नहीं भूलूंगा और लोगों का मार्गदर्शन करने वाला एक अच्छा राजा बनने के लिए कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने का वादा करता हूँ। काल सामा, यह सही है, आप ये कर सकते हैं, मैं भी पूरे दिल से तुम्हारा समर्थन करूंगा। मंच पर एक प्रहसन हुआ और दर्शकों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। मैं उस दृश्य को ठंडी आंखों से देख रहा था, और यहां एक और बात घोषित करनी है। युवराज ने स्पष्ट स्वर में घोषणा की और गहरी सांस ली। अनातासिया क्लिनेल वॉन रामस्लेट, आगे आओ। भीड़ तुरंत शांत हो गई, और अनातासिया, जिसका नाम क्राउन प्रिंस ने पुकारा था, ठंडे भाव के साथ आगे बढ़ी। अनातासिया, इस क्षण से, मैं तुमसे अपनी सगाई तोड़ रहा हूँ। घटना के समय मंच से अनातासिया की ओर देखते हुए युवराज ये घोषणा करते हैं। महाराज, क्या आप गंभीर हैं? अनातासिया परेशान नहीं दिखती और वह स्पष्ट लहजे में इसकी पुष्टि करती है, जैसे कि वह कागजी कार्रवाई कर रही हो। तुम अभी भी एक नासमझ औरत हो। तुम्हारी जैसी घटिया औरत की बजाय, ये दयालु और दयालु एमी ही मेरी मंगेतर बनने की हकदार है, राजकुमार ने बेरुखी और बेरुखी से कहा। लेकिन अनातासिया ने बिना कोई भाव बदले राजकुमार से इसकी पुष्टि करने को कहा। महाराज, क्या आप वाकई एक ऐसी महिला चाहते हैं जो शिष्टाचार, कुलीनता या यहाँ तक कि देश क्या है, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती? महामहिम, सचमुच सोचते हैं कि यह महिला इस देश की रानी बनेगी? अनातासिया अपनी भाव भंगिमा खोए बिना अपनी ठंडी निगाहें एमी की ओर घुमाती है। एमी, जो दृष्टि रेखा में थी, झटके से सिकुड़ गई और युवराज ने उसे धीरे से गले लगा लिया। बेतुका मत बनो, इस देश को उसकी दयालुता की जरूरत है, इसे तुम्हारी जरूरत नहीं है जो हर बात में तर्क ढूंढने की कोशिश करती है। सबसे पहले, हम जानते हैं कि तुमने एमी के साथ कितने ही अत्याचार किए हैं। तुम्हारे जैसे गुणों वाली औरत हमारे देश की रानी बनने के लायक नहीं है। क्या ऐसा है? तब तो महाराज परिणाम की जिम्मेदारी लेंगे, है ना? अनातासिया का संवाद खेल से काफी अलग है। जैसा कि मैंने सोचा था, अनातासिया ने मन ही मन युवराज से नाता तोड़ लिया है। युवराज को देखते हुए अनातासिया के मन में जरा भी अफसोस नहीं है। मैंने सोचा था कि तुम क्या कहोगे, लेकिन यही कारण है कि मुझे बड़े सिर वाले रामस्लेट पसंद नहीं है। यही कारण है कि रामस्लेट ऐसे बेवकूफ हैं जो हमेशा सिर्फ गेहूं ही उगा सकते हैं। अनातासिया, जो आसानी से पीछे हटने वाली थी, ने इसका विरोध किया। महाराज, मुझे परवाह नहीं कि आप मुझसे क्या कहते हैं, लेकिन मैं ड्यूक ऑफ रामस्लेट के अपमान को नजरअंदाज नहीं कर सकता। कृपया अपनी कही बात वापस लें। आप क्या बात कर रहे हैं, मैं तो आपको सिर्फ तथ्य बता रहा हूँ। यह सही है, इसीलिए अनातासिया सामा, जो एक प्रांतीय परिवार से है, काल सामा को नापसंद है, तुम्हें पता है? शायद एमी ने इसे अनातासिया को नाराज करने का मौका समझा, इसलिए उसने उस पर हमला कर दिया। हालांकि अनातासिया ने एमी को ठंडी नजर से देखा और हल्की सी आह भरी। एमी, क्या तुम भी रामस्लेट परिवार का अपमान करने जा रही हो? ये सच है क्योंकि काल सामा ने ऐसा कहा है। आइए, ब्रेयस परिवार के खिलाफ रामस्लेट परिवार से औपचारिक विरोध दर्ज कराएं। अपने माता पिता के घर की शक्ति का उपयोग करना कायरता है, टीएल, इसलिए एक असहाय लड़की पर हमला करना कायरता नहीं है, माँ। जब मैंने ये बातचीत सुनी तो मेरे सिर में दर्द होने लगा। खैर, मुझे यकीन है कि वह उसे गुस्सा दिलाने के इरादे से ऐसा कर रही है, लेकिन ये किस तरह का तर्क है कि एक पूरे कुलीन परिवार का अपमान करने के बाद एक घर के रूप में विरोध करना कायरता है, जो सम्मान को महत्व देता है? बस करो ये बेकार की बातें, अब मैं तुम्हें यहीं छोड़ता हूँ। अनातासिया ऐसा कहती है और फिर वापस जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन युवराज उसे रोक लेता है। रुको, एमी सही कह रही है। अगर तुम्हें खुद पर गर्व है कि तुम एक कुलीन हो, तो अपने माता पिता के सामने रोने से पहले खुद ही इस समस्या का समाधान कर लो। तब तक, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। महाराज, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके दस्ताने किस काम के हैं? कम से कम इस तरह के मामलों में इसका इस्तेमाल हल्के में नहीं किया जाना चाहिए। मैं समझ गया, ड्यूक ऑफ रामस्लेट की बेटी परिवार के गौरव और सम्मान के लिए लड़ भी नहीं सकती। ऐसा लगता है कि महामहिम ड्यूक में बच्चों के पालन पोषण की कोई प्रतिभा नहीं है। ये कहने के बाद क्राउन प्रिंस ने अनातासिया पर हंसी उड़ाई और ये देखकर वहां मौजूद कुछ मेहमानों को भी हंसते हुए सुना गया। क्या महाराज मुझे द्वंद्व युद्ध के लिए आवेदन करने को कहेंगे? खुद सोचो, क्या तुम तब तक नहीं समझोगे जब तक मैं, युवराज, तुम्हें सब कुछ न बता दूं? हमेशा की तरह कितनी घिनौनी औरत है। ये सुनकर अनातासिया के चेहरे पर उसकी हताशा साफ झलक रही थी। संक्षेप में, उसे युवराज के नाम पर आदेश दिया गया था कि वह स्वयं द्वंद्व युद्ध के लिए आवेदन करे। समझा, अनातासिया ने ऐसा कहा और अपने दस्ताने एमी की ओर फेंक दिए। ओह ओम, ये है। एमी को अपने ऊपर फेंके गए दस्ताने से बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने उन्हें उठाकर अनातासिया को वापस करने की कोशिश की। मुझे मूर्ख बनाने के लिए तुम किस हद तक जाओगे? अनातासिया क्रोधित नहीं हुई बल्कि उसने एमी को ठंडी निगाहों से देखा। एमी, इसका मतलब है कि उस महिला ने अपमानित महसूस करते हुए तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी है। अच्छा, क्या ऐसा है? मैं लड़ रहा हूँ, बिगड़ी हुई आवाज में एमी ने राजकुमार से ऐसा पूछा। बकवास, आप निश्चित रूप से जानते थे कि इसका क्या मतलब है और आपने जानबूझकर अनातासिया को निंदा समारोह के दौरान निर्वासित करने के लिए द्वंद्व युद्ध में लड़ने के लिए इसकी व्यवस्था की। कोई बात नहीं, मैं एमी की ओर से ये द्वंद्व युद्ध लड़ूंगा। खेल की तरह युवराज प्रॉक्सी के लिए आवेदन करता है। क्या महाराज, एक महिला को द्वंद्व युद्ध लड़ने का आदेश देना और फिर द्वंद्व युद्ध में उसके प्रतिद्वंद्वी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना, क्या आप पागल हैं? तुम क्या कह रहे हो? तुमने अकेले ही द्वंद्व युद्ध की मांग की थी। मैं एमी की रक्षा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं प्रतिनिधि के रूप में काम करूंगा, बस इतना ही। अनातासिया, जैसे भी हो शांत हो जाओ, मैं एक प्रॉक्सी के रूप में भी काम करूंगा। मैं भी यह करूंगा, मैं भी, चलो करते हैं, बेशक मैं भी लड़ूंगा। खेल की तरह सभी पांच कैप्चर लक्ष्य प्रॉक्सी के लिए आवेदन करते हैं। आपका क्या हाल है? क्या आपका कोई प्रतिनिधि हम पांचों के खिलाफ लड़ने को तैयार है? अनातासिया ने चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में मौजूद सभी लड़कों ने अपनी नजरें फेर ली। खैर, कोई भी युवराज और पड़ोसी देश के राजकुमार से लड़ना नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि आप लोकप्रिय नहीं हैं, युवराज अनातासिया की ओर देखते हुए ऐसा कहते हैं, लेकिन आप इसे किसी भी तरह से देखें, यह अधिकार का मामला है। फिर भी ऐसा लगता है कि अंततः लड़ने का समय आ गया है। थोड़ी देर सांस लेने के बाद मैं अपना हाथ उठाता हूं और आगे बढ़ता हूं। मैं एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करूंगा। गुलजार भोज हॉल में मेहमानों ने अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ ने मुझे उत्सुकता से देखा, कुछ ने अपनी भौहें उठाई और कुछ एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। दूसरी ओर छात्र और शिक्षक अचानक सगाई रद्द होने और आवेदन करने की प्रक्रिया को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। एलन, आप तो उस समय के आम आदमी हैं, है ना? इस सब के बीच अनातासिया और क्राउन प्रिंस की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। अनातासिया किसी मटर के दाने से मारे गए कबूतर की तरह हैरान दिखती है, लेकिन क्या क्राउन प्रिंस का संदिग्ध चेहरा और वो बातें ज्यादा नहीं हैं? हे भगवान, मैं अभी भी महामहिम के समान ही कक्षा में हूँ। इसके बजाय अनातासिया सामा, कृपया मुझे जल्द से जल्द अपना प्रतिनिधि स्वीकार करें। ए आ ओम, मैं मानता हूँ। हालांकि अनातासिया आश्चर्यचकित थी, लेकिन मैंने जल्दी से उसे यह बात स्वीकार करने के लिए मना लिया और तेजी से आगे बढ़ गया। और इस द्वंद्व युद्ध में आप एक दूसरे से क्या मांग करते हैं आप, अनातासिया सामा?
मैंने पहले ही निर्णय ले लिया है। रामस्लेट परिवार का अपमान वापस लो और माफी मांगो। ठीक है, तो इमी सामा के बारे में क्या? अब हमारे पास मत आना। ओह, ये तो बिल्कुल वही खेल है। जीज, क्या वो मानती है कि अगर वो भी यही सब करती रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा? ठीक है, फिर अगर अनास्तासिया सामा जीत जाती है तो एमी सामा और अन्य लोग स्वीकार करेंगे कि रैमस्लेट परिवार के बारे में उनकी पिछली टिप्पणियां अपमानजनक थीं और औपचारिक रूप से माफी मांगेंगे। और अगर एमी सामा जीत जाती है, टीएल, जो नहीं होगा, एलन यही सोच रहा है, अनास्तासिया सामा एमी सामा से दूर रहेंगी, क्या ये सही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम एमी और हम पांचों से दूर रहोगे। मैं समझ गया, तो फिर हम इसे इसी तरह करेंगे। फिलहाल हम स्थिति की पुष्टि लिपिकीय तरीके से कर लें। द्वंद्व युद्ध का प्रारूप क्या होगा? तुम्हारे पास एक है, मुझे चार और प्रॉक्सी लाओ। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो हम हर दिन एक एक करके मुकाबला कर सकते हैं और तुम्हें लगातार पांच मैच जीतने होंगे। क्राउन प्रिंस ये कहते हुए मुझे, या यूं कहें कि हमें, नीची नजर से देखते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें हम पर 5-1 की लिंचिंग करने का मन नहीं है। नहीं, हो सकता है कि वह हमारा मजाक उड़ा रहा हो और खुद को यहाँ श्रेष्ठ समझ रहा हो। आह, ये तो झंझट होगी। तो क्या मैं तुम पांचों को एक साथ मेरे पास आने दूं? एक बनाम पांच और मारने के अलावा कुछ भी हो सकता है। क्लाउड उन शब्दों पर प्रतिक्रिया करता है। ओई ओई ओई, तुम्हें लगता है कि तुम हमसे लड़कर जीत सकते हो? तुम अपनी औसत तलवारबाजी और जादू के साथ। टीएल, ये सुनकर मुझे कहीं न कहीं यह एहसास हो रहा है कि डाकू की भूमिका उसे राजकुमार की तुलना में ज्यादा सूट करेगी। मैं समझ गया, तो आप ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, तो फिर यही सही है। वैसे भी ये आखिरी बार होगा, तो चलो जितना हो सके चीजों को और भी ज्यादा हिला देते हैं। वे जितने अधिक क्रोधित होंगे, मेरे लिए ये करना उतना ही आसान होगा। हम महाराज क्लाउड, क्या आप मुझसे डरते हैं क्या? जाहिर है, क्लाउड का स्वर और भी तीखा हो गया। अगर यह मंगा या एनीमे होता तो शायद उसके माथे पर गुस्से का निशान होता। टील, खैर यह एक वेब उपन्यास है, अब कृपया शांत हो जाए। लेकिन प्रिंस क्लाउड सही कह रहे हैं, है ना? क्लाउड को समझाते हुए मार्कस ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। जादू में तुम मुझसे या महामहिम से कोई मुकाबला नहीं कर सकते, और तलवारबाजी में भी लियो महामहिम या प्रिंस क्लाउड तुमसे बेहतर हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑस्कर भी है, जो एक कुशल तीरंदाज है। हमारे सामने तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। मैं तुम्हारे द्वंद्वयुद्ध के लिए आगे आने के साहस की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन तुमने बहुत कुछ कर लिया है। हम कुछ बुरा नहीं कहेंगे, इसलिए पीछे हट जाओ। खैर, यदि आप मुझे ठीक से नहीं जानते तो आप संभवतः इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, और पहली नज़र में यह एक अच्छा तर्क प्रतीत होता है, लेकिन इसे प्रस्तुत करने का यह तरीका बहुत खराब है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा, अभी जरूरी है कि सामने वाला अपना संयम खो दे। मैं किसी भी अनावश्यक हस्तक्षेप से बचना चाहता हूं जिससे मामला बिगड़ जाए, इसलिए ऐसा होने से पहले मुझे द्वंद्व युद्ध जल्दी खत्म करना होगा। इसीलिए हालांकि मेरे मन में मार्कस के खिलाफ कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं उसे उकसाने जा रहा हूं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से प्रभावित नहीं हो सकता जो पढ़ाई में मुझसे लगातार हारता रहता है ना? मार्कस सामा, क्या? मैं तो तुम्हारे भले के बारे में सोच रहा था। जब मैंने उसे जगाया तो मुझे अजीब प्रतिक्रिया मिली। क्या वह उत्तेजना के प्रति कम सहनशील है, या फिर वह किसी ऐसी सत्ता द्वारा उत्तेजित होना बर्दाश्त नहीं कर सकता जो उसे नीची नज़र से देखती है? किसी भी तरह से ये निम्न उबलते बिंदु संभवतः उन्हें भविष्य के प्रधानमंत्री बनने से अयोग्य ठहराएगा। तुम सुंदर नहीं हो, है ना? जैसी कि उम्मीद थी, अगर तुम एक आम आदमी हो तो तुम बर्बर होने से खुद को नहीं रोक सकती, है ना? मैं समझ गया, क्या सिर्फ रईसों को ही सम्मान मिलता है? हाँ, लेकिन कई रईसों को तो नहीं मिलता, तो ऑस्कर सामा और बाकी लोग किस समूह में हैं? और हाँ, मुझे लगता है कि एक औरत को घेरना और उसकी मंगेतर के तौर पर उपेक्षा करना और भी बर्बर है ना? इसके अलावा जब बात मर्दों का एक औरत के पीछे भागने की आती है तो मेरा मानना है कि मधुमक्खियां भी ऐसी ही होती हैं, है ना? क्या? ऑस्कर ने अपना शानदार चेहरा बिगाड़ लिया। तभी लियोनार्डो मेरी तरफ आया। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें सुनना असहनीय है, उचित व्यवहार करो। भले ही तुम ऐसा कह रहे हो, तुम ही तो हो जो आरोप लगा रहे हो, और पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुमने एक औरत को घेर लिया था और उसे अपनी गलती मानने पर मजबूर करने की कोशिश की थी। हालांकि तुम नाइट कैप्टन के बेटे हो, फिर भी हम में से कौन मूर्ख है? लियोनार्डो सामा, क्या? किसी तरह जब मैंने उनके गुस्से का स्विच दबाया तो वे अजीब तरह से प्रतिक्रिया करने लगे। ये दिलचस्प हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मुझे इसमें आनंद मिलता है तो यह मेरे चरित्र के लिए बेहद बुरा होगा, और मुझे डर है कि मैं बाद में आत्म घृणा में पड़ जाऊंगा, इसलिए इससे पहले कि मैं कोई अजीब दरवाजा खोलूं, कहानी को समाप्त कर दूं। अब महामहिम युवराज कार्ल हिंस, मुझे यह मत बताइए कि आप भाग जाएंगे, भले ही 1-5 की स्थिति बहुत अनुकूल हो। क्या तुम? आह, मैं समझ गया, ठीक है, अगर गलती से मर जाओ तो अफसोस मत करना। क्या आप घोषणा कर रहे हैं कि आप अब हत्या पर रोक लगाने वाले नियम को तोड़ने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह ... भागो मत, अभी प्रशिक्षण मैदान में आओ। अरे, कोई इस द्वंद्व युद्ध का गवाह तो बने, तो फिर मैं ये करूंगा। जब युवराज ने ऐसा कहा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी मेहमानों की मेज से उठ खड़ा हुआ। वह उन लोगों में से एक था जो अभी अभी युवराज के साथ अनास्तासिया पर हंसे थे। क्या आप फैसले में भी धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ऐसे में बस इन लोगों को वापस पटरी पर लाने की बात है। तो फिर हम पहले प्रशिक्षण मैदान में तुम्हारा इंतजार करेंगे, भागना मत। इसके साथ ही एमी, क्राउन प्रिंस और कंपनी तथा वह अधेड़ उम्र का आदमी वहां से चले गए। तो ठीक है अनास्तासिया सामा, मैं छात्रावास वापस जाऊंगा और अपने हथियार ले आऊंगा, इसलिए कृपया पहले प्रशिक्षण मैदान में जाएं। मैं ये बात अनास्तासिया को बताता हूँ, जो स्तब्ध रह जाती है। वैसे मेरे पास इस समय हथियार न होने का कारण यह है कि शाही महल के अंदर तलवारें ले जाने की अनुमति नहीं है और स्कूल यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर है। मेरी आवाज सुनकर अनास्तासिया को होश आया और वह मुझे धमकी भरी नजरों से देखने लगी। टील, नीचे इस कार्यक्रम की सबसे मनोरंजक बातचीत है, वास्तव में ये देखने लायक है। क्या बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो? अभी देर नहीं हुई है, मैं तुम्हें प्रतिनिधि के तौर पर मना कर रहा हूँ। इस स्थिति में कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। इसके अलावा अगर द्वंद्व युद्ध में तुम्हें कुछ हो गया तो उसे बस एक दुर्घटना ही माना जाएगा। मैं तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को ऐसी जगह मरने नहीं दे सकता। हम, क्या तुम मेरे बारे में चिंतित हो? कोई बात नहीं, मैं मरने वाला नहीं हूँ। या यूं कहें कि अगर मेरा प्रतिद्वंदी ऐसा ही है, तो चाहे कितने भी लोग आ जाएं, मैं बहुत समय में जीत जाऊंगा। क्या, एलन, क्या आपने सुना है? इस शाही राजधानी में एक साहसी व्यक्ति है जिसके नाम सबसे कम उम्र के सी रैंक का रिकॉर्ड है। मैंने सुना है कि यह मैं हूँ। तुम्हें पता है, मैं सबसे कम उम्र का सी रैंक एडवेंचर हूँ जिसने गोब्लिन स्लेयर और ऑक्स स्लेयर उपलब्धियों के साथ गोब्लिन डंगोन पार किया है। मैं अकेले ब्लिजार्ड फीनिक्स को हराने में भी सफल रहा हूँ। टीएल, अनास्तासिया की तरह है। आज दूसरी बार मैं अनास्तासिया की उलझन भरी और स्तब्ध अभिव्यक्ति देख सका। जब मुझे एहसास हुआ कि शायद यह आखिरी बार है जब मैं इसे देखूंगा, तो मुझे अकेलापन महसूस हुआ। लेकिन मैंने इसके लिए तैयारी कर ली है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा और ये लड़ाई जीतूंगा। तो आपको आराम करना चाहिए जैसा कि आप एक बड़ी नाव में करते हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप इस द्वंद्व युद्ध को जीतेंगे।